considering the situation of different Shia centers in GTA, what is the best way to unite GTA Shia community? इसके ऊपर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, ज़ाहिर है इसका कोई ताल्लुक अमेरिका और ईरान के मामले से भी नहीं है और इसका कोई ताल्लुक ज़ाहिरन बैन अक़वामी ताल्लुकात से भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसके ऊपर कई दफ़ा अर्ज़ कर चुके हैं तो अभी मौका पाकर उसको दोबारा अर्ज़ कर देते हैं। वही कि हमारे ख्याल में जो कम्यूनिटीज़ रही हैं दूसरे मुल्कों में जिन्होंने अपने कल्चर को महफूज रखा है, क्योंकि देखिए आप जो यहाँ पर हैं, आप और हम सब के जहन के अंदर जो एक ख़तरा लगा हुआ है, ज़ाहिर हम इसको एक थ्रेट समझ रहे हैं कि भाई हमारी नस्लों को, अगली नस्लों को ये दीन मिलेगा या नहीं मिलेगा जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम यहाँ आए ही क्यों हैं, ये एक अलहदा क्वेश्चन है जिसको अभी ज़ाहिर है कि हम डिस्कस नहीं करें, बेहतर है। तो जिस वजह से भी आए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे दीन अगली नस्लों को पहुँचे, तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सी कौमें हैं जो किसी ऐसी जगह पर जाकर अपने दीन को बचा पाई हैं, कौन सी कौमें, उन्होंने क्या किया इस काम के लिए। तो मिसाल के तौर पर आप वेस्ट की बात कर रहे हैं हम और आप, तो हम देखते हैं कि भाई वेस्ट में क्या हुआ, तो हमारे पास चंद मिसालें हैं, बहुत सारी कौमें गायब हो चुकी हैं, बहुत सारी कौमें गायब हो चुकी हैं और वो डिज़ोल्व हो गई या डायल्यूट हो गई कम अज़ कम। कुछ हैं जिन जो अभी भी बाकी हैं, तो उसका स्टैंडर्ड हम क्या रखते हैं, उसका स्टैंडर्ड मैं और आप ये रखते हैं कि देखते हैं इस कम्युनिटी के वो लोग कि जो कम्युनिटी छोड़कर जनरल पब्लिक में चले गए कितने फ़ीसद हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम सबको मालूम है कि इस तरह की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जिनका कम्युनिटीज़ से निकल कर जाना बहुत कम है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब बेटा अब तुम बैठ जाओ, इसको रख लो, हाँ बैठ जाओ और सारे जमा करते रहो, ठीक है, मुँह सुकून से बैठ जाओ, टेक लगाओ, हाँ अब बैठ जाओ और जितने आते रहेंगे फिर एक दफ़ा मैं तुमसे बुलवा लूँगा, ठीक है ना, वरना तुम फ्रेम में बार बार आ रहे हो ना, लोग तुम्हें देख रहे हैं फिर मुझे नहीं देख रहे। हाँ तो मैंने कहा कि मैं दो प्लेयर क्यों बर्दाश्त करूँ भाई, मैं अकेला रहूँगा, अकेला खेलूँगा भाई मैं कि दो, ठीक है तुम बेटा खेलोगे इसका मतलब है बाद में खेलोगे। तो भाई वो जो कौमें हैं जिन्होंने अपने ड्रॉप आउट्स को बचा लिया, उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने ये किया कि वो सिस्टम के अंदर, यानी एक बिगर सिस्टम के अंदर रहे और उन्होंने किस्मत पे छोड़ दिया कि बच जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई कौम नहीं बची है, ये सब गायब हो गए। अच्छा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि मुख्तलिफ इलाकों में बिल्डिंग्स बनाई हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया है और हमने ये लोगों को मौका दिया है कि वो बाकी सोसाइटी को अगर हॉस्टाइल समझ रहे हैं तो वो यहाँ पर आकर अपने कस्टम्स और रिचुअल्स को और अपने दीन को प्रैक्टिस में ले आए, यही किया ना हमने। तो मिसाल के तौर पर हमने ये जगह बनाई, सेंटर बनाए और उन सेंटर्स का काम यह है कि वो हमारी सकाफत के वो पैरामीटर्स जिनको दूसरी जगहों के ऊपर पूरा नहीं किया जा रहा था वो यहाँ पे पूरा कर लें। तो मजलिस चाहिए आप यहाँ पे आ जाइए, आपको नमाज बा जमात चाहिए आप यहाँ पर आ जाएं, और आपको मिसाल के तौर पर बाहर बेपर्दगी नज़र आ रही है तो आप सेंटर में आ जाइए, हम बीच में एक लगा देंगे ताकि बेपर्दगी ना हो, इस टाइप का हमने एक एनवायरमेंट बना लिया। अच्छा अब सवाल ये है कि क्या ये करके कम्युनिटीज बची हैं, इसकी मिसाल कहाँ पर होगी, इसकी मिसाल बिला तशबी अर्ज कर रहा हूँ, इसकी मिसाल होगी कि जैसे कोई कम्युनिटी कनाडा आए और कनाडा में आने के बाद अपना चर्च अलहदा बनाए और वो सोचे कि मैं बच जाऊँगा, सभी ऐसा ही हो गया ना, थोड़ा चर्च में आना जाना कम है, यहाँ पर सेंटर्स में आना जाना ज़्यादा है। तो जिन कम्युनिटीज़ ने सिर्फ चर्च बनाए क्या वो बच गए, तो मैं आपको तकरीबन गारंटी से कह रहा हूँ कि ऐसी कम्युनिटीज़ नहीं बची हैं, ये कम्युनिटीज़ नहीं बची हैं, या कम से कम उनका ड्रॉप आउट हमारे ड्रॉप आउट से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, 19-20 के फ़र्क पर हमारी तरह है। फिर वो कौन सी कम्युनिटीज़ बची हैं, वो कम्युनिटीज़ बची हैं जिन्होंने सिर्फ सेंटर्स नहीं बनाए कम्युनिटीज़ बनाई हैं, वो बचे हैं। ज़ाहिर है हमारे पास जो बहुत बड़ी बड़ी इसमें मिसालें हैं, जिसमें कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ भी हैं जैसे आमिश और कुछ جیوش کمیونٹیز بھی ہیں جیسے ہیزیٹک جیوز وغیرہ، ان لوگوں نے باؤنڈری والز نہیں کھینچی ہیں. ان کی مثالوں کے اندر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے پوری باؤنڈری وال کھینچ کر گارڈ بٹھا دیا ہو کہ آپ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے، یہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن انہوں نے کنسنٹریشن کو اتنا بڑھا دیا کہ وہاں کوئی اور آئے گا ہی نہیں. باؤنڈری والز نہیں ہیں، آپ اپنی گاڑی سے ان کے علاقے میں جا سکتے ہیں، ان کو گھومتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں، ان کی لائف اسٹائل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو کر رہ رہے ہیں کہ بہت آسانی سے وہ اپنے آپ کو مینج کر رہے ہیں. اس اسٹائل کے اوپر سروائیول رہا ہے کتنے عرصے، 400 سال بھی رہا ہے، 400 سال بھی باقی ہیں. تو مثال کے طور پر امریکن کے اندر، امریکہ میں فلیڈلفیا وغیرہ کے اندر جو امش کمیونٹیز ہیں، ان کا 450-450 سال کا سابقہ ہے پھر، لیکن باقی ہیں. تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کم سے کم پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہی صحیح کچھ سیکھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا باقی رہنے کا چانس کتنے پرسنٹ ہے. دنیا میں یہی کرتے ہیں سب. اور میں جیسے وہ مثال دی آپ کی خدمت میں کہ بھائی ایرانیوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ 4000 ایئرز میں جن دشمنوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے ان کے جیتنے کا چانس کتنے پرسنٹ ہے، تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا چانس 8% 10% ہے، تم ٹرائی کرنا چاہو تو کر لو، 90% چانس یہ کہ ہم جیتیں گے. تو جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں صرف سینٹرز کے ذریعے سے، اس میں سروائیول کا چانس کتنے پرسنٹ ہے؟ اس میں ڈراپ آؤٹ پہلی جنریشن میں اراؤنڈ 40% ہے، دوسری جنریشن تک آتے آتے اراؤنڈ مور دین 70% ہے. اگر آپ کو یہ سیٹسفیکٹری لگ رہا ہے کیپ ڈوئنگ اٹ، اگر آپ کو لگ رہا نہیں یہ خطرناک ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے تو جاؤ پھر کچھ اور کرو. اس میں یہ ڈراپ آؤٹس ہیں، تو اگر اس پہ سیٹسفائڈ ہیں پلیز کرتے رہیے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں نہیں اس پہ سیٹسفائڈ نہیں ہے تو جاؤ پھر کچھ اور ٹرائی کرو، وہ ٹرائی کر لو جو ان لوگوں نے کیا، یا کوئی نیا کوئی انوویشن لے آئیے. لیکن اپنے آپ کو اس بات پہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں کہ ہماری قسمت اچھی رہے گی انشاءاللہ؟ اس پہ وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ بھائی پہلے اونٹنی کے پاؤں میں رسی باندھو پھر توکل کرو اللہ کے اوپر. اب اونٹنی کے پاؤں میں رسی باندھے بغیر آپ کہہ رہے ہو کہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں لگ رہا. تو چلیے یہ بات بھی آ گئی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لکھا ہے کہ آر یمنی ہاؤسیز گیٹنگ سپورٹ فرام ایران، ایران کیپس ڈینائنگ سپورٹنگ ہاؤسیز. اف ایران از ناٹ سپورٹنگ ہاؤسیز دین ہو از پرووائڈنگ آرمز ٹو دیم؟ صحیح بھائی، میں کیا انٹیلیجنس کا بندہ ہوں بھائی، مجھے کیا پتا؟ اور اگر مجھے پتا بھی ہو تو کیا میں زاویے میں بولوں گا یا اپنے آپ کو پھنساؤں گا کیا؟ میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ بھائی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہوتا کیا ہے. میں گھٹا بلا لوں، کیوں اتنا مقابلے پر آ رہے یار تم؟ تو اب سوال میرے خیال میں کافی زیادہ ہو گئے. آپ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بولنے کا عادی ہوں، میں چیمپئن کہنے والا تھا میں رک گیا، میں تو عادی ہوں. آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، اور میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں آپ سنتے سنتے وہ ہو جائیں گے پھر، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ شیعہ ہی رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ ہاؤسز کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ایک آسان کام ہے، میں نے غلطی سے اس کوشچن کو بھی مکس کر دیا. دنیا میں ایک آسان کام ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر چیز انکلوڈنگ اسرائیل کے ٹینک پیسے پہ ملتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کر سکتے ہیں. تو آپ ہاؤسز کہاں سے آم لا رہے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ ہوگا تو لے آئیں گے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جہاں سے اسلحہ لے کر ملک میں آئیں گے وہاں سے، باہر سے ان کو کوئی پیسہ بھی دے سکتا ہے. ان کے اپنے کوئی سپورٹر ہوں گے دنیا میں، ہاں یمنی دنیا بھر میں ہوں گے، پیسہ بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے؟ یقیناً بھیجیں گے. تو یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، ملک کے اندر کوئی پیسہ جنریٹ ہو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو جنریٹ ہو رہا ہوگا، بالآخر کافی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں پھر وہ لوگ؟ تو یہ بات تو بہت سادہ سی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی حکومت کسی بھی قسم کا بلاکیٹ لگا دے، اسمگلرز چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ اسمگلرز چلتے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، وہ بے کام اپنا کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، دو ملکوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اب کہاں اسمگلر کوئی چلے گا بیچ میں؟ ذرا سوچیں آپ بھائی، ادھر سے بھی گولہ باری، ادھر سے بھی گولہ باری، بیچ میں ساری آرمیز بیٹھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ ہم ایرانیوں کے ایک ایسے ٹاؤن میں گئے جو عراقی بارڈر جس کے اوپر جنگ چل رہی تھی اس کے نزدیک تھا، तो वहां देखा तो जनाब इराक का बना हुआ साबुन बिक रहा था। ये क्या इराक का साबुन जिससे जंग चल रही है मुल्क से, उसका साबुन ईरान में बिक रहा है। क्या भाई ये क्या मुसीबत है, इनका साबुन यहाँ कैसे आ गया? तो पता चला भाई ये इराकी स्मगलर्स हैं, ये टर्की लेके जाते हैं, फिर टर्की से घुमा के ईरान लाते हैं। चैंपियन होते हैं भाई, वो कहीं से कहीं कर लेते हैं वो, तो उनका कोई भरोसा नहीं होता, वो सारी दुनिया में घूमते हैं। यानी ईरानी इतना ज़्यादा, ईरानी इनकलाब के बाद मंशियात पर इतनी पाबंदियाँ, और वो खुद एक्सेप्ट करते थे कि हमारी इतनी पाबंदी के बावजूद इतना टन मंशियात अफगानिस्तान से यूरोप जा रहा है और हमारे मुल्क से गुजर के जा रहा है। या इलाही, अभी मैंने कहा वो इतना चौड़ा मुल्क है कि आर्मी इधर से उधर नहीं जा पाती है, और स्मगलर्स यहाँ से ईस्ट से घुसते हैं, वेस्ट से निकलते हैं और पूरे ईरान को क्रॉस करके चले जाते हैं, जबकि हुकूमत सिंसियरली उनको रोक रही है। तो ये भाई ये हौसीज हैं, ये उनका मुल्क है, उनको पता है हमारे पास समंदर कितना है, उनको पता है हमारे पास पहाड़ कितना है। अगर कोई दुनिया की ताकत इस समंदर और पहाड़ में उनको शिकस्त दे सकती होती है ना, तो ये जंग 3 साल चलनी नहीं थी अभी तक। ये उनका इलाका है, ये जो टेरेन होता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आप सोचें आज तक अफगानिस्तान के ऊपर कोई सुपर पावर कब्जा नहीं कर सकी है, क्यों? बिलाखिर पहाड़ एक मसला होता है, इसको गुजारना आसान नहीं है। आप ये देखें हमारी इस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपने पहाड़ों से नहीं निपट पाई है, उसको भी वहाँ टफ टाइम उठाना पड़ जाता है। तो ये यमनी उसी किस्म के माहौल में रहे हुए, लिहाजा रहबर मौज़म ने फरमाया था कि इनके हारने का इम्कान 0 से कम है, और सऊदियों के जीतने का 0 से कम इम्कान, नहीं हो पाएगा। ताकत भी है उनके अंदर, जज्बात भी हैं, और इलाका भी उनका अपना, और किस किस्म का इलाका, ये मैदान से बहुत मुख्तलिफ है। जब ग्राउंड्स होते हैं तो भी बहुत मुख्तलिफ होता है। अब आप तसव्वुर करें कि वियतनामियों को पहाड़ नहीं मिले थे, वियतनामियों को जंगल मिले थे, उन्होंने जंगल में भी अमरीका को नहीं जीतने दिया। ज़मीन के नीचे टनल खोद खोद के पूरे शहर बना दिए उन्होंने, पूरे पूरे शहर बने हुए थे जहाँ नीचे स्कूल्स चल रहे थे, कॉलेजेस चल रहे थे, सबका सब चल रहा था। पहाड़ तो बहुत बड़ी दौलत होती है, पहाड़ को कौन शिकस्त देगा? तो इस तरह का मामला चलता रहता है, ये सब 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 चलता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाउ कैन वी क्रिएट एम्पैथी विद ऑप्रेस्ड पीपल इन अ ट्रू सेंस? वी नाउ टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ इन्फो बट रियली डू नॉट हैव empathy at community level, is it due to our way of life? हाँ, depend करता है हमारी priorities क्या हैं life के अंदर। एक दफ़ा होता है कि किसी शख्स की priority ये होती है कि वो किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, तो फिर वो अपने आप को satisfy नहीं कर पाता कि मैं कैसे खुश हो जाऊँ जबकि फ़लाँ फ़लाँ लोग मुसीबत में हैं। जैसे मौला के फरामीन के अंदर हम देखते हैं कि मसलन ऐसा नहीं कि मौला ने हमें सिखाने की खातिर ये जुमले इरशाद फरमाए, ये नहीं, उनके दिल का दर्द है कि वो कहते थे मैं कैसे खामोश हो जाऊं, कैसे इस बात पे खुश हो जाऊं कि लोग कहें अली अमीर हैं जबकि लोग भूखे सो रहे हैं। तो ये एक है मसला। अब मसला हम लोगों के साथ मसला क्या है, वो क्या कहते हैं जुमले में, कहते हैं कि इंसान या तैश में ज़ाहिर होता है या ऐश में ज़ाहिर होता है, जब वो अय्याशी कर रहा होता है, खुशियाँ मना रहा होता है, या जब वो गुस्से के अंदर होता है। तो मिसाल के तौर पर हम लोग पूरी दुनिया में इस फिनोमिना को देख रहे हैं कि कई टन खाना हर रोज़ तो क्या कई हज़ार टन हो जाएगा, हर रोज़ सैकड़ों टन खाना ज़ाया हो रहा होगा उसी शहर में जहाँ पर इतने ही भूखे होंगे। अच्छा, किसी का दिल दुख रहा है? वे अगर वाकई दिल दुख रहा है तो स्टेप क्यों नहीं ले रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ते? और जो आगे बढ़ने वाले हैं वो कितने हैं? हम मेरे जैसे लोग सब बोल बाल के खुश हो जाएंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, अपना भड़ास निकाल ली। जाविया का एक मकसद है ही यही, जाविया प्रोग्राम का एक मकसद भड़ास निकालना है एक्चुअली, कि मैं भड़ास निकाल लूँ कि मैंने जालिमों के खिलाफ बोल लिया, आप भी सुन लें कि भाई हमने जालिमों के खिलाफ कम से कम सुन तो लिया ना, और उसके बाद सोचें काम पूरा हो गया। नाउज बिल्लाह ताला, नहीं भाई, काम बोलने से सुनने से पूरा नहीं होता, शुरू होता है। फिर शुरू हो, फिर आप सोचेंगे अब मसलन भूखे की भूख को कैसे पूरा करें, जालिम के जुल्म से कैसे लड़ें। हम उस लेवल पे नहीं हैं हम लोग, या वो लोग हैं जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के अंदर गुम हैं कि भाई मेरा काम सही हो जाए मामला। और हम मेरे जैसे लोग क्या हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं वो, इसको मैं बहुत दफ़ा पहले कहता था, अभी यादिश बख़ैर दोबारा याद आ गया, हम लोग हैं इल्मी मुजाहिदीन, इल्मी अय्याशी के मुजाहिदीन। हम बातें करके अपना जिहाद पूरा कर लेते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। भूखे का पेट बातों से नहीं भरता है, काम करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर ये पैशन आएगा कि नहीं हाँ हमने कुछ करना है, तो फिर ज़ाहिर रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के अंदर भी। यकीन फरमाइए, अगर पाकिस्तान में लोग सोशल वर्क ना कर रहे होते नाऊज़ बिल्लाह ताला, तो हालत बहुत बुरी होनी थी, बहुत ज़्यादा बुरी होनी थी। कुछ लोग कर रहे हैं, अलबत्ता जो हो रहा है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहरहाल लोग कुछ कर रहे हैं। एक और मुश्किल है कि जो वो कर रहे हैं शायद उसकी डायरेक्शन इतनी साउंड नहीं होगी, लेकिन फिर मैं डरता हूँ कि हमारे जैसे लोग 5 साल का मंसूबा बनाने में भूखे से कहेंगे 5 साल बाद आऊँगा मैं, तो उस वक्त तो उसकी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो फिर जो लोग कर रहे हैं कम से कम वही कर लें, कुछ तो मिल जाएगा उसे, तो करने का मसला है ना। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसराइल से ताल्लुकात में अरबों की तेज़ी पर मसलन फरमाया कि आप क्या ख्याल है, ओमान जो पहले मुतवाजन लगता था इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा, मसलन इन्होंने कहा कि भाई बहुत तेज़ी आ रही है। असल में जो मुझे समझ में आता है, जब इस किस्म की तेज़ी आती है तो इसका मतलब ये है कि इसराइल को थ्रेट, बहुत कोई सब्सटेंशियल थ्रेट मिला है जिसके ऊपर वो एकदम रिएक्ट करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों के सामने कोई सब्सटेंशियल थ्रेट है जिससे वो अपनी एग्जिस्टेंस को ख़तरे में देख रहे हैं, उसको बचाने के लिए हर तरफ हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। ओमान जैसा मुल्क अब क्यों जा रहा है इसराइल की तरफ, अब क्यों जा रहा है? अब मैं ये नहीं सोच सकता कि मसलन सुल्तान काबूस क्या सोच रहे होंगे, और उसने अब तक बहरहाल ये काम नहीं किया था, लेकिन ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सुल्तान काबूस की जो पॉलिसी है, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि वो मौके के ऊपर प्रेशर को रिलीज़ करना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि मैं स्टैंड लेने की पोजीशन में आऊँ, वो ये नहीं चाहता। तो जब भी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है वो थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए कोई हरकत करता है, लेकिन उसके बावजूद वो रिलीज़ इतनी होशियारी से करता है कि सरेंडर ना करे। तो ये एक ही अमान ने इसराइल को ये कहा, मसलन वज़ीर आज़म पहुँच गया इसराइल का वज़ीर आज़म, उसने कहा कि हम कबूल करने को तैयार हैं। अमान वो कंट्री था जिसने सबसे पहले इक्तसादी ताल्लुकात बहाल किए थे इसराइल के साथ, इकॉनमी के लेवल के ऊपर, लेकिन अभी तक वो उसकी गोद में नहीं बैठा। इसका मतलब है इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है। अच्छा, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जब भी किसी मुल्क के ऊपर कोई इतना बूढ़ा आदमी हुकूमत करने लगता है जिसने 25 साल 30 साल 40 साल बिता ली हो, तो वो नेतन्याहू जैसे बच्चों को इन्फेंट देखता है। जब चूंकि वो खुद 40 साल से बैठा है ना, तो वो कहता है मैं 40 साल से बैठा हूँ, ये आया कल और ये चला जाएगा, तो वो इस तरह से डील कर रहा होता है। इसमें मुमकिन है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, मामला ख़राब भी हो सकता है। वैसे भी सुल्तान काबूस के बारे में मशहूर है कि उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और किसी भी वक्त में इस कंट्री को इस वैक्यूम का सामना करना पड़ेगा। तो मुमकिन है कि उनकी प्लानिंग ये हो कि हम इस वैक्यूम के क्रिटिकल टाइम पर कोई बहुत सख्त प्रेशर नहीं उठाना चाहते, लेकिन बहरहाल ये समझ में आता है कि ये कंट्री इतनी जल्दी सरेंडर करने वाला कंट्री नहीं है, लेकिन ये प्रेशर रिलीज़ करने के लिए टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। और तो मुझे इससे बहुत कोई सब्सटेंशियल ख़तरा ओमान की तरफ से नज़र नहीं आता कि ओमान एकदम से इसराइल की गोद में जाके बैठ जाएगा, फिर वो फलां हो जाएगा और ये हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस तरह से इतनी आसानी से नहीं होगा। और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी रिजल्ट लेना चाहते हैं ना। आपको याद है मुक्तदा सदर ने सऊदी अरब में मुलाकात कर ली थी, क्या क्या बातें हो गई थी सारी, और फिर वो इलेक्शन भी हुए तो उसने और मामला ख़राब कर दिया, लेकिन अभी वो चीज़ें थोड़ी सी दब गई हैं फिर दोबारा से। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिखा है वेस्ट के मुल्क जैसे कनाडा का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, मसलन आप मेरी बात को मानेंगे कहाँ? देखें मुसीबत ये है, अगर मैंने कह भी दिया कि भाई फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो क्या आप क्या वापस चले जाएंगे? नहीं वापस नहीं जाएंगे आप। अच्छा अगर मैं कह दूँ फ्यूचर अच्छा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो यहीं रहेंगे ना बिलाखिर। तो अब आप क्यों पूछ रहे हैं? आप इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं आपको या डराऊं या कोई खुशखबरी दूं। आप अपना प्लान जारी रखिए भाई, जो आप कर रहे थे वो आप करेंगे, मुझे पता है। मेरी तो ओवरऑल वेस्ट के बारे में फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। एक मुल्क की बात क्यों करें, मसलन कनाडा को ही क्यों ले लें, पूरे वेस्ट को देख लें, या कम से कम नॉर्थ अमेरिका को देख लें। तो मुझे तो उसूली तौर पर कोई भी ऐसे किसी भी ऐसे कल्चर का लॉन्ग टर्म फ्यूचर नज़र नहीं आता जो खुदा की नाफरमानी में इतनी आगे आ चुकी हो। मुझे बुनियादी तौर पर तो मैं इस तरह से सोच, दो तरह से आप सोचते हैं ना, एक दफ़ा आप बिल्कुल मटीरियल टर्म्स के अंदर सोचते हैं, एक दफ़ा आप थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल से भी सोचते हैं, कुरानिक इंटरप्रिटेशन और ये और वो। तो मैं अगर कुरानिक इंटरप्रिटेशन में रखें तो उस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है जो खुदा की नाफरमानी में इस लेवल पर आ जाए। ये तो कुरान से भी साबित किया जा सकता है अगर कोई अपनी उस प्योरिटी के साथ कुरान को स्टडी कर ले, वरना तो चलाने वाले बहुत बैठे। एक बंदा आया मुझसे कहने का, मौलाना क्या शराब हराम है? मैं कहा भाई कल तक तो हराम थी, अभी आज का नहीं पता है क्या, कोई काम हो गया हो। तो उसने कहा कुरान में है क्या? मैंने कहा हाँ कुरान में है कि मसलन रिज्सुम मिन अमल शैतान फजतनबू, ये नजिस है, ये शैतान का काम है, इससे बचो। तो कहने का ये तो नहीं कहा कि हराम है। तो अब अगर कोई इस बसीरत से कुरान को पढ़ने लगे फिर तो वो निकाल लेगा कोई ना कोई रास्ता, लेकिन अगर कोई नॉर्मल तरीके से कुरान करीम को पढ़े समझने की खातिर, तो बहुत वाजह है कि इन इस टाइप के गुनाहों पर इस कल्चर का फ्यूचर नहीं होता, इस कल्चर का फ्यूचर नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं आती। फिर बहुत अजीब एक वाकया कुरान करीम में लिखा हुआ है और फरमाया कि एक गांव था, एक इलाका था जहाँ पर हमने नेमतों को बेपनाह बढ़ा दिया और वो लोग अपनी नेमतों को लेकर बहुत खुश थे, बग़ैर मेहनत के पता नहीं उनको क्या क्या अल्लाह की नेमतें मिल रही थी, लेकिन जब फ़ुक़रा उनका रुख करते थे तो वो बहुत चिढ़ते थे। तो उन्होंने कहा खुदा से कि खुदाया बाइद बैना असफारना, खुदाया तू ये जो हमसाये से गरीब गुरबा उठ कर हमारे इलाके में आ जाते हैं इनके रास्तों को बढ़ा दे। तो उन्होंने ऐसी हर्डल्स खड़ी की कि गुरबा ना आ सकें। तो खुदा ने मुताल फरमाता है कि इन्होंने गलत किया और खुदा ने मुताल फरमाता है कि हमने जालना हम अहादीस, हमने इनको ऐसा तबाह किया कि हमने इनको कहानी बना दिया। तो ये खुद खुदा के कुछ कवानीन हैं बहरहाल जो एक फर्द पे नहीं पूरी सोसाइटी पे रूल कर रहे होते हैं, और सोसाइटीज़ को ये देखना चाहिए कि वो खुदा के उन कवानीन को चैलेंज ना करें, वरना फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अच्छा मुमकिन है कोई ये कहे भाई ये फ्यूचर कितने साल में अच्छा नहीं होगा, हाँ ये टाइम लग सकता है, मुमकिन आपकी नस्ल कट जाए इसी में, लेकिन जिस कौम का फ्यूचर इस टाइप का हो उससे आपको मिलेगा क्या? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कारून जिस दिन तबाह होगा उस दिन तो तबाह होगा, लेकिन उससे तबाही से पहले अगर कोई कारून से दोस्ती कर रहा था तो उसका भी क्या होगा, उसका भी तो अच्छा नहीं होगा। तो आप और मैं बहुत ओरिएंटेशन बिल्कुल क्लियर करें, हम और आप किस लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, जो बैठना हमारा है वो किस हदब से किस मकसद से है, और आप यहाँ से क्या अचीव करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगली नस्ल के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लें, उसके बाद फिर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैंने अर्ज़ किया अगर बैठना ही है तो फिर तरीके से बैठो, प्लानिंग करके बैठो, अगर बैठना ही है बैठना तो तरीके से बैठो, काम करो जिसके ऊपर मुतमईन हो जाओ कि हाँ भाई इससे हम कम से कम एक थ्रेट को काउंटर करने का प्लान तो किया ना कोई। ये बात है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्होंने पूछा कि ये आप सी पैक का तस्करा किया, ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई और उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट को ले आया, वो ले आए, 5 साल बाद क्या होगा? बिकॉज बोथ अदर पार्टीज आर करप्ट। हाँ 5 साल बाद क्या होगा, मतलब इमरान खान साहब 5 साल हुकूमत कर लेंगे इसके बाद क्या होगा? मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, इस्टेब्लिशमेंट लाती है इस्टेब्लिशमेंट लेके जाती है। जिस दिन उनका मूड हुआ कि उनको इस प्लेयर से काम पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है दूसरा प्लेयर लेंगे, अभी भी तो ले ही आए थे ना, तो वे इसी को भी चलाएंगे। अभी मेरा अपना ख्याल नहीं है कि 5 साल में काम ख़त्म होगा इनका, अभी चलेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है इनके पास, तो ये चलेंगे, इनके साइड में कुछ लोग हो सकते हैं वो चल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप उसकी परवाह नहीं करें, बिल्कुल परवाह नहीं करें, क्योंकि आप परवाह करके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ आप कुछ और देखें, आप ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पर मुझसे कोई पूछे तो मैं उससे कहूँगा ये देखो कि ये जो गंगा बह रही है इसमें तुम कर क्या सकते हो, इसको भूल जाओ कि वो क्या कर लेगा, ये देखो आप क्या कर सकते हो। अभी पाकिस्तान एक डेवलपमेंट के फेज़ में आया है, स्ट्रांगली डेवलप करेगा अपने आप को इंशाल्लाह। और ये फोकस्ड डेवलपमेंट है और ये लॉन्ग टर्म रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं हम अपनी कम्युनिटीज़ के साथ इस मौके से फ़ायदा कैसे उठाएं, ऐसा ना हो कि हम वो काम कर गुजरें जो हमने 70 साल पहले किया था। 70 साल पहले क्या किया था, 70 साल पहले जब पाकिस्तान बना तो हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी पर थे और उसके बाद इसी पाकिस्तान के अंदर हम अपने दिफा की जंग लड़ने पर मजबूर हो गए। तो बहुत अजीब बात थी, 70 साल पहले जिस कम्युनिटी ने पाकिस्तान बनाया था क्या वो सोच सकते थे कि एक ज़माने में दर दीवार पे हमारे कुफर के नाम लिखे होंगे, नहीं सोच सकते थे ये। लेकिन ये गलती हो गई, हमने उस मौके के ऊपर शायद सही तरीके से मामले को समझने में कुताही दिखाई। इंडिविजुअलिज्म बहुत अच्छा था, इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत खूबसूरत किए हैं बाज़ लोगों ने, लेकिन हम एक मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सके अपने आप को समझने के लिए या दुश्मन की ताकत को समझने में। भारत एक बात बहुत अजीब है, शायद हम ये नहीं समझ पा रहे कि शिया कम्युनिटी की आइडेंटिटी कहाँ से है, स्ट्रेंथ कहाँ से है। इसको मैं पहले भी एक जगह कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ऐसी तकल्लुफ़न अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर आप लोग बाद शायद मुझे कोई बाद में इस पर सरजनिश करे इस जुमले पर, आप में से ज़्यादातर लोगों के मौलवियों से ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं वैसे, सही है, मैं मान रहा हूँ, मैं ख़ुद मौलवी हूँ तो मैं इसको कहता हूँ। तो बाद जो हमारे दोस्त हैं जो हमसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जब मैं उनके सामने कहता हूँ मौलवी, मैं मौलवी हूँ, तो कहते हैं मौलाना ये मत कहें, फिर आप मौलाना भी कहते हैं कहते ये मत कहें। तो क्या है कि बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक ख़बर या कहें कि क्या हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, आप पाकिस्तान में बग़ैर मौलवियों के कोई काम कर नहीं पाएंगे, कम अज़ कम नियर फ्यूचर में ऐसा ही है। लंबी मुद्दत में शायद ही गेम चेंज हो जाए, बहुत कोशिश कर रहे हैं बेचारे, तो वो मिसाल के तौर पर खादिम हुसैन जैसे मौलवी को लाएं जिसको देख के ही आदमी कहे कि भैया कुछ कुछ तो। लेकिन मैं अभी भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, चाहे पाकिस्तानी अवाम को आप 10 खादिम हुसैन देकर उल्लू बनाएं और बाद में उसके ऊपर लानतें पढ़वा दें, अभी भी पाकिस्तान में दीन का इख्तदार बहुत मजबूत है, ये नहीं टूटेगा इस तरह से। और मैं अभी भी अर्ज़ करूँगा खुदा ना करे कि टूटे, चूँकि फिर ये कौम कहाँ जाएगी, इसको आप मैं और आप संभाल नहीं पाएंगे फिर। तो अब ये था कि हमारी जो शिया कौम है इसकी तो आइडेंटिटी ही रिलीजियस है, ये कितना तैयार है अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, नॉट सोशल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उनको बचाने पर, उनको बनाने पर, उनको मजबूत करने पर, इस पे कोई जान नहीं देना चाह रहा, बल्कि सोचना भी नहीं चाह रहा। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ, मसलन बिल्कुल सादा सी बात है, मैं मुख्तलिफ सोशल प्रोजेक्ट्स करता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ मैं एक कॉलेज बना रहा हूँ, आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ मैं एक मदरसा बना रहा हूँ तो आप कहेंगे ये फिर वही सही। अच्छा अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आप इस तरह चिढ़ते रहेंगे ना, इससे कौम का मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान को पहचानने की कोशिश करें, पाकिस्तानी अवाम को समझने की कोशिश करें, आप खुद आपकी आइडेंटिटी भी इसी पर है। जितना आपको नुकसान दीन के नाम पर होगा, बेदीन आपको इतना नुकसान नहीं दे पाएगा, आपको दीन के नाम पर नुकसान होगा। अगर आप दीन के नाम पर नुकसान से बचना चाह रहे हैं, दीनदारों को सही करें, दीनी क़यादत के अंदर पॉजिटिव लोगों को आना चाहिए, इस तरफ को हम जाना ही नहीं चाह रहे, बेजार हुए बैठे हैं गोया बाज़ लोग, तो भाई फिर तुम्हारी कम्युनिटी कैसे बनेगी। अच्छा बॉटम लाइन में फिर गाली भी उधर ही देनी है, बुरा वाला भी उन्हीं को कहना है। अरे भाई जब तुम बन नहीं रहे हो, उसको अहमियत भी नहीं दे रहे हो, उसको इज्जत भी नहीं दे रहे हो, और उसके बाद कुछ गलत लोग आके बन जाएं, खुदा न करे अगर गलत कह भी रहे हो, तो फिर उसको तो फिर वही तो यही करेगा, फिर तुमने तो ग्राउंड खाली किया है, फिर क्यों बुरा भला कह रहे हो। तुम खुद भी नहीं करना चाह रहे, साथ भी नहीं देना चाहते, बनाना भी नहीं चाहते, और प्राउडली इस बात को कहेंगे कि मसलन हम नहीं करेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो भाई तो फिर तुम्हें नुकसान भी वहीं से होगा। ये एक तल्ख हकीकत है, इसको हम कहीं ना कहीं एड्रेस करना होगा, वरना कौमें नहीं बन पाएंगी। और वो शिया कम्युनिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर जो स्ट्रेंथ पाई हैं, आप मसलन मैं अभी आपके सामने उंगलियों पर गिनना शुरू करूँ, आप ईरान का नाम लेंगे, इराक़ का नाम लेंगे, लेबनान को कहेंगे, बहरीन को कहेंगे, इन सब के पास मौलवियों का 500-500 साल 800-800 साल का सबका है, इनके पास इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ये लोग पुरानी कौम है, इन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है कि हाँ हमें अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को स्कॉलर्स के जरिए से महफूज करना, आप और मैं नहीं करना चाह रहे इसके ऊपर, ये एक पैराडॉक्स बना लिया हमने अपने लिए और उसकी वजह से हम अपने ट्रबल में फंसे हुए हैं। सही है जनाब। अब इन्होंने बाद में जनाब कनाडा के लोकल इलेक्शंस के बारे में एक सवाल कर डाला है, देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिखा है कनाडा में लिबरल्स को सपोर्ट करें या कंजर्वेटिव्स को। अभी मैंने कहा आप तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे कहने पे आप दूसरे को कहाँ करेंगे। ऐसे तमाम बातों को मैं और आप एक आदमी के कहे ना कहे पे ना छोड़ें। ये तमाम काम कुछ ऐसे लोगों के साथ अंजाम पाने चाहिए, कुछ ऐसे लोगों की नज़र से राय से बनने चाहिए जो इन कामों के एक्सपर्ट्स हों, वो बैठें इवेलुएट करें फिर आपको अपनी सजेशंस दें। ये इस तरह से नहीं होने चाहिए। बदकिस्मती से ऐसे ही हो रहे हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे हो रहे हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है, आप लोग चाहे आपका पासपोर्ट दुनिया में कहीं का भी हो, तबीयत में पाकिस्तानी हैं आप लोग, ये आप तब्दील नहीं होंगे। ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। पहले मैं समझ रहा था 2004 से पहले जब मैंने आना शुरू नहीं किया था कि शायद कुछ और हो रहा है, अब मुझे पता चल रहा है कि भाई कनाडा और ओकाड़ा में सिर्फ जोग्राफिया का फ़र्क है, बाकी सब एक ही है। तो आप इसके लिए एक्सपर्ट्स को बिठाइए, उनको उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, जो इवेलुएट करें, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करें, उसके बाद कुछ सजेशंस दें। ये एक दुनिया का तरीक़ेकार, इसके लिए दुनिया में इंस्टीट्यूट्स बनते हैं। एक तो हमारे यहाँ वो एक मुसीबत लगी हुई है कि भाई वो दीन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और भाई दीन का सियासत से ताल्लुक नहीं है तो तुम किसी भी कम्युनिटी में रहोगे वहाँ सियासत तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगी। तुम कहाँ से कह रहे हो दीन का सियासत से ताल्लुक नहीं, ये तुम्हारा सेंटर नहीं बनेगा अगर सियासत के ऊपर हाथ नहीं रखा, तुम्हारी दुनिया में कहीं सांस लेने के लिए जगह नहीं बचेगी। ये किसने पता नहीं कहाँ से छोड़ दिया, और स्टॉन्च बिलीवर हमारे जैसे बोलने वाले उसके ऊपर पता नहीं कितना कौम को पुश किए जा रहे हैं कि नहीं भाई नहीं है ताल्लुक, नहीं है ताल्लुक, और जो बोल रहा है वो फिर किसी मौके पर जाकर फिर किसी सियासतदान के साथ बैठ जाता है। भाइयों भाई ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे आप अलहदा नहीं कर सकते हैं। आप कैसे आप कह रहे हैं इस बात को, हाँ आप मुमकिन है कोई इंटरप्रिटेशन सोच रहे हो, हम कुछ और बोल रहे हो, ये हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस हो, लेवल ऑफ इंटरफ्रेंस का फ़र्क हो, मुमकिन है आपकी कोई बात हम गलत समझ रहे हैं, आप हमारी कोई बात गलत समझ रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं हो सकता आपका, आपको रहना यहीं पर है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप। आप कहीं जाके जंगलों गारों में बयाबानों में रह रहे होते तो फिर तो शायद आजकल तो दुनिया में हुकूमत कोई वहाँ पे भी नहीं छोड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप जहाँ शहरों में रह रहे हैं, मुल्कों में रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं सारे काम कर रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं सियासत से आपका ताल्लुक नहीं? ये क्या आप इमरान खान कर रहे हैं फिर? क्योंकि आप डर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में कोई सियासतदान आ गया तो अब क्या होगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने गलत फैसले किए थे जिसकी वजह से हमारी शिया कौम मर रही थी, अब शिया कौम क्या है कि हमारे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई तो तुम्हारा ताल्लुक नहीं, उसका तो तुमसे ताल्लुक है। वो जो एक मशहूर जुमला है कि भाई वो एक आदमी था, उसने देखा कि पानी में कंबल बह रहा है, उसने कहा कि छलांग मारूं कंबल तो उठा लूं कम से कम मुफ्ते का मिल रहा है, तो वो बेचारा छलांग मारता है नीचे। अब वो जाके कंबल लाना चाहता है, वो आ नहीं पा रहा, तो ऊपर से दूसरा आदमी देख रहा था, उसने पूछा भाई क्या हुआ, तो अब वो नीचे वाला क्या बताया कि जिसको कंबल समझ के आया था वो रीछ था। तो उसने कहा कि भाई आओ ऊपर, तो कहने लगा मैं नहीं आ पा रहा, तो कहने लगा कंबल छोड़ के आ जाओ, तो कहने लगा मैं तो छोड़ रहा हूँ कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, फंस गया हूं मैं। तो भाई मैं सियासत को छोड़ दूंगा, सियासत तो मुझे नहीं छोड़ रही, वो तो मुझे पकड़ के बिठा रही है। अब आप बोले जाओ नहीं है ताल्लुक, नहीं है ताल्लुक, तो वो तो नहीं छोड़ेगी आपको, वो तो पकड़ लेगी। तो भाई समझ में नहीं आती हमें क्या है ये। बहरहाल दुरूद भेजें इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। Because why Hamas leadership have never appreciated Iran, Hezbollah, and why ordinary Palestinians hate Shia? ये बहुत अजीब बात है। मेरा अपने ख्याल है कि शायद ये statement इस generalization के साथ शायद सही नहीं है। कई दफ़ा हमास के लीडर फलस्तीनियों ने इस बात का इतराफ़ किया है कि पूरी दुनिया में हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं वो यही लोग हैं। आप सिर्फ इतना काम कर लें, कितनी दफ़ा हमास और फलस्तीनी लीडरशिप ने ईरान को विजिट किया है, सिर्फ उसी को जाके चेक कर लें। कितनी दफ़ा जाकर उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स दिए उनको देखें। असल में आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टेटमेंट आपको CNN पे मिले, बीबीसी पे मिले वहाँ नहीं मिलेगा, हाँ ये बात कंफर्म है। वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको देंगे, अलबत्त बाज़ जगह मजबूरन कुछ चीज़ें बता देते हैं, लेकिन ये है कि वो आपको बताएंगे नहीं इस तरीके से। मसलन क्या उन्होंने कभी रिफ्लेक्ट किया कि बहुत बड़ा एक फ़लस्तीनी लीडर शिया है, हमास का लीडर शिया है, और वो भी आप जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम कन्वर्टेड नहीं कहते, हम एनलाइटेड कहते हैं, एनलाइटेड शिया, तो ये कोई नहीं बोलेगा आपके सामने, लेकिन है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग असल में हमारा जो अप्रोच है मीडिया तक या न्यूज़ तक के लिए, वो एक फ़िल्टर के साथ है, वो फ़िल्टर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में जैसे एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है तशय्यो के अंदर, आप सबको पता है, यहाँ पे भी चल रहा है किसी हद तक, वो ये कि भाई ये मसलन शहादत सारे साहब को बोलना है या नहीं बोलना है, मसलन मराज तक तकलीद करनी है या नहीं करनी है, इस तरह का एक इशू ज़ाहिर हर जगह चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत शिद्दत से। अब जनाब कुछ दिन पहले एक साहब मेरे पास आए यहीं कैनेडा में, उन्होंने कहा कि भाई कोई आलिम इस मसले पर बोलता क्यों नहीं है। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, इनको शायद कुछ पता ही नहीं है दुनिया में। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी सोर्स क्या है, तो जाहिर है कि आयतुल्ला व्हाट्सएप, तो भाई वो व्हाट्सएप पे कुछ आता है बहुत कुछ नहीं आता है, और व्हाट्सएप के जरिए पूरे पाकिस्तान को जज करो, यार ये क्या बात हुई। अब यही तवक्को थी मुझे कि भाई इस तरह की कोई बात होगी, फिर वो पता नहीं कितने लोग बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि चूंकि मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आया इसका मतलब है दुनिया में नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। आप थोड़ा सा अपनी उसमें पॉसिबिलिटीज़ में ही रख लो कि मुझे पता नहीं चला होगा। एक बहुत अच्छी खूबी है यहाँ पे रहने वालों की कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन भी नहीं देते कि सामने भी कोई ऑप्शन होगा, भाई थोड़ा सा कुछ ख्याल करो गरीबों का भी भाई। और लिखा है उसके बाद, अब देखो दूसरा सवाल भी ऐसे ही कुछ आएगा शायद, देखते हैं पढ़ते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिखा है, ऑल्दो रहबर इज प्रोपेगेटिंग इस्लामिक ब्रदरहुड बट मेजोरिटी ऑफ सुन्नीस हु आर वहाबीज। एक तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है, कब मेजोरिटी ऑफ सुन्नीस वहाबीज हैं, वहाबीज तो बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, सिर्फ किसी भी सूरत में मेजोरिटी नहीं है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हु आर वहाबीज नहीं है, बिल्कुल गलत है। आर अगेंस्ट शियाज, रादर हेट शियाज इवन। मैं तो बाद वहाबियों को देख रहा हूँ कि अब वो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं भाई मामला इतना ख़राब नहीं जिस तरह से हमें बताया गया था, और सुन्नियों को कहना कि मेजॉरिटी उनकी वहाँ भी है, तो बिल्कुल ही यानी मिस स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर तो मेरे ख्याल में इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, हम लोग अपने जहन में कुछ चीज़ें सोच के बैठ जाते हैं और वो इतना हम चांस नहीं देते कि भाई कोई और साइड भी हो सकती है इसकी। तो आप हमेशा इस पॉसिबिलिटी को तो दें कम से कम कि भाई कुछ और भी हो सकता है। लिखा है कि पाकिस्तान में धरना ग्रुप की ताकत मुल्क के लिए कोई ख़तरा बन सकती है। मेरा अपने ख्याल है मैं ऐसे अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कभी कि इस्लामाबाद में कोई धरना नहीं होगा तो नहीं होगा, और जब वो सोचेंगे कि हो जाए तो कोई रोक नहीं पाएगा, ये है उनकी ताकत। आप उनको, मेरा अपने ख्याल है, हम लोग या तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ इन लोगों से, मैं बहुत ज़्यादा उनको बोल रहा हूँ तो बढ़ा रहा हूँ चढ़ा रहा हूँ, या आप शायद मसलन जो सवाल करने वाले इस टाइप के लोग हैं वो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरा ये मुमकिन है दोनों चीज़ें हो रही हूँ, थोड़ा मैं बढ़ा चढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सुनने वाले अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन लोगों को। ये लोग, मेरा अपने ख्याल है, ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इनको पूरे मुल्क के ऊपर यूँ कंट्रोल है जैसे मुट्ठी पे हैं, तो ये जब चाहते हैं अपने मुखालिफिन जो लुक लाइक मुखालिफिन होते हैं उनको फेंक देते हैं। आपको याद है एक दिन आया था यौम इश्क रसूल, क्या हुआ था उस दिन मुल्क के अंदर, उफ़ इश्क रसूल के नाम पे जो उन्होंने बुग्ज़ और कीना फैलाया पूरे मुल्क के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की लीडरशिप तमाशा देखती रही फैलाओ। तो इनके कंट्रोल में रहता है ये, मैं ऐसी अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ऐसा भी होता है बाद औकात। बहुत पुरानी एक बात है, बहुत पुरानी, आपको याद होगा, बास को तो याद होगा जो मेरी तरह बूढ़े हो गए, कि मुशर्रफ के ऊपर एक दो ज़माने में कातलाना हमले हुए थे, एक के बाद एक दो कातलाना हमले हुए थे, और उस ज़माने में एंटी मुशर्रफ खूब जनाब अली मुजाहरे होना शुरू हो गए थे पूरे मुल्क के अंदर। उस ज़माने में मेरी मुलाकात एक साहब से हुई, और वो जो साहब थे वो कोई बहुत लो लेवल के, कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं, बहुत लो लेवल के, मिसाल के तौर पर आर्म फोर्सेज वगैरह के अंदर थे। तो वो कहीं नज़र नियाज थी हमारे यहाँ, तो उसके ऊपर आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो तुम लोग बहुत डरा रहे हो यार, ये मुशर्रफ साहब क्या जाने वाले हैं, क्योंकि जब मुशर्रफ आए थे तो थोड़ा सेक्टेरियनिज्म को थोड़ा ब्रेक लगा था, तो शिया जो थे वो थोड़ा सा इस बात में एक्साइटेड थे कम से कम कुछ तो ब्रेक लगा, जान तो छुटी। तो वो जब मुजाहरे बहुत ज़्यादा हुए तो मसलन सब लोग डर रहे थे कि भाई अगर ये चला गया तो फिर जो अब आएंगे इसके बाद वो तो फिर ख़तरनाक कौम आ जाएगी, फिर क्या होगा। तो मैंने उससे ऐसे ही बैठे बैठे कहा, मैंने कहा भाई क्या मसला यार, तुम लोग डराए जा रहे हो, वो तो जाने वाला है शायद। कहने का कौन? तो मैंने कहा मियाँ मुशर्रफ। कहने का कैसे? मैंने कहा भाई ये मुजाहरे हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। तो मुझसे ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसे उसने मेरे साथ मजाक किया मैं आपको सुना रहा हूँ। कहने का आज क्या दिन है? मतलब मैंने कहा पीर है। कहने का जुमरात को ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल। कहना जुमरात को ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा खेल रहो? कहना नहीं, जुमरात को ख़त्म हो जाएंगे, लिटरली जुमरात को ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए। अब इसमें रीज़न आप खुद सोच लो कि क्या लेना चाह रहे थे, क्या देना चाह रहे थे, क्यों एक दिन तक अलाउ किया था, क्यों उसके दिन के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। तो ये गेम होता है इस तरह का, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो हम लोगों को लगता है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कंट्रोल से आउट नहीं होता, अंदर अंदर सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, 100 में कोई एक इवेंट शायद हो जाए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर उसको मैनेज करना पड़ जाए, ऐसा भी होता है। जैसे मसलन ये, जैसे अभी इन्होंने सऊदियों ने उसको मारा जमाल खशोगी को, और बाद में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो क्या पहले नहीं मारते थे? बहुत मारे, ऐसे नहीं मारे क्या? वो जो आदमी था वो इतना ट्रेंड था, उसने एयरफोन लगाया, म्यूज़िक सुन रहा था, वो बंदा उसकी बॉडी को डिस्पोज कर रहा था और सबको बोल रहा तुम लोग भी म्यूज़िक सुनो, मैं जब भी ये करता हूँ म्यूज़िक सुनता हूँ, पहली दफ़ा कर रहा था क्या? एक्सपर्ट था, 25वीं दफ़ा कर चुका होगा। ऑस्ट्रेलिया में इसी की ट्रेनिंग भी ली थी उसने, लीगल तरीके से पोस्टमार्टम की ट्रेनिंग उसने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। तो इतने इतना करने वाले अंडर कंट्रोल समझते हैं, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मामला। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट, ये जो मामले हैं खादिम साहब, ये सब, ये मेरा ख्याल में, मेरा अपने ख्याल है खादिम साहब का फ्यूचर ज़्यादा नहीं है, ये बहुत जल्दी वापस जाएंगे, बहुत जल्दी वापस जाएंगे, मुझे ये लग रहा है। ये ऐसे जो जिस तरह पॉपअप होके आते हैं ना, फिर उनका पता होता है इतनी तेज़ी से वापस जाना है इन्होंने। कंट्रीज़ के साथ भी यही होता है, चले मैं अब यहाँ से एक एडवांटेज ले लेता हूँ, जिन कंट्रीज़ को बनने में देर लगती है उनको जाने में भी देर लगती है, जो जल्दी से बनते हैं उतनी तेज़ी से जाते हैं। ये एक 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 स्टडी थी, बहुत पहले मैंने इसको पढ़ा था, अभी मैं इसको ख़राब ना कर दूं, कोई इसका माहिर बैठा हो तो मेरा बाद में मजाक उड़ाएगा। तो उसमें एक स्टडी की गई थी कि भाई मिसाल के तौर पर, बहुत माजर के साथ, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा मेरे दिमाग में स्पार्क कर रहा है, मतलब इंसान का बच्चा 9 महीने में बनता है, तो कहते हैं इसकी डेवलपमेंट का जो टाइम लगा है ये बता रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ इसकी बॉडी में क्या रहेगी। लेकिन मसलन कुछ ऐसे होंगे जानवर या मसलन जिनके अंदर इतना टाइम नहीं लगेगा, अब जब मसलन आप जाओ मक्खियों में देखो, इसमें देखो, उसमें देखो, तो इनका टाइम बहुत कम लगेगा। तो कहते हैं कि भाई जिसकी डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा उसका बहरहाल एक रिफ्लेक्शन उस एग्जिस्टेंस पर होगा। ये वो लोग करते हैं जिनका खुदा से मसलन इतना ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, वो ऐसी फिजिक्स की, फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करने वाले लोग हैं। तो मसलन इसको ऐसे ही कहीं इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमी के अंदर, कहते हैं एक मुल्क है जो बिल्कुल पॉपअप होके आता है, कैसे, जैसे दुबई, ठीक है, कितना सर्वाइव करेगा? इतना ही जितना इसको बनने में टाइम लगा, जिस तेज़ी से बना है उतनी तेज़ी से जाएगा। तो मिसाल के तौर पर कहते हैं भाई किस सुपर पावर को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, तो मिसाल ऐसी मिसाल में कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा टाइम इंग्लैंड को बनने में लगा, इसको जाने में भी इतना ही टाइम लगा, और अमेरिका को बनने में कितना टाइम लगा है, तो फिर कहते थे जाने में भी इतना ही लगेगा। कनाडा का कयास आप खुद कर लो, बाकी मैं क्या बोलूँ, तो इसको खुद सोच लो भाई। एक तो बहुत बड़ा एक मसला है कि उर्दू लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, फिर दूसरा मसला है कि उर्दू में सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम के इतने वर्जन्स हैं कि अब मैं ऊपर पढ़ता ही नहीं कि क्या लिखा है। लेकिन भाई ये कहीं सलाम लिखना सीख लो ताकि अच्छा रहे, कहीं दूसरे किसी के सामने लिखो तो पता चले। अच्छा लिखा है मिक्स गैदरिंग के बारे में, हाँ शायद लिखा है सही से एक्सप्लेन करना शायद, यानी बाकी तो मैंने सही नहीं किया, इसको कम से कम सही कर दूँ। मिक्स गैदरिंग के बारे में पता नहीं किससे बाहर सही लिखा होगा, ये सही से एक्सप्लेन कर दें कि इसमें पूरे पर्दे में भी नहीं जा सकते या जा सकते हैं। दूसरी बात जगह लिखा है ऐसी जगह पे जॉब करना जहाँ पे हराम बेचना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन कर दें। और दोबारा वस्सलाम भी वैसा ही, तो उसमें यह था कि बाद अवकात क्या होता है, हम लोग बहुत तेज़ी में कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ना, तो फिर वो वाकई सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, فقہی مسائل میں ایسا بہت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سیناریو نہیں ہوتا، سیناریو بہت سارے سیناریو بن سکتے ہیں، ان سارے سیناریو کے اندر حکم ممکن ہے مختلف ہوتا چلا جائے. مثلا ایسی میں سیناریوز بنا رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر، میں ان سب گیدرنگ میں نہیں گیا ہوں جن کی سیناریوز بنا رہا ہوں، میں ایسی میں اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوں. مثلا ایک دفعہ ہوگا کہ مکس گیدرنگ ہوگی جہاں پہ سب لوگوں نے انتہائی شرافت مندانہ باحیا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، باحیا طریقے سے مل رہے ہوں گے، میوزک وغیرہ اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی، لیکن سیپریشن نہیں ہے. یہ سیناریو اس سے بہت مختلف ہوگا کہ آپ ایک ایسی مکس گیدرنگ میں گائیں جہاں میوزک بج رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور جناب بے حیائی چل رہی ہے لباس میں بھی اور طریقہ کار میں بھی. کیا دونوں ایک مکس گیدرنگ کے ٹائٹل میں آ پائیں گے؟ نہیں، زمین سے آسمان کا فرق ہے. جبکہ جنرلی اسپیکنگ دونوں مکس گیدرنگ ہے. تو بعض اوقات ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فقہ کا حکم آتا کس پر ہے، مکس گیدرنگ پہ آتا ہے، بے پردگی پہ آتا ہے، میوزک پہ آتا ہے، بے حیائی پہ آتا ہے، کس پہ آتا ہے. تو مکس گیدرنگ، آپ نے جیسے سوال کیا مکس گیدرنگ، تو یوں لگ رہا ہے جیسے مکس گیدرنگ از اے ٹائٹل جس کے اوپر فقہی حکم آتا ہے. نہیں، آپ کو بہت اور چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس خاطر میں کہتا ہوں اس کو صحیح سے ایکسپلین کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اسی طرح جاب کا مسئلہ جہاں پہ حرام بیچو، اس ظاہری طور پر تو یہ ہے، اب ہم لوگ وہی کرتے ہیں پھر کہ ہم جملے کو پڑھتے ہیں، جو پہلا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم اس کو بول دیتے ہیں، اور اس میں ہم یہ احتیاط کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے پوچھنے میں کچھ اور پوچھا تھا، آپ نے لکھنے میں یہ لکھ دیا ہے، تو ہم نے جواب اس کا نہیں دیا جو آپ کے دماغ میں ہے، ہم نے جواب اس کا دیا ہے جو پیپر پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہت مختلف ہو جاتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے ایسے سوالات کو یہاں پہ کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ لوکل ٹورنٹو میں تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے علماء موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اور ان سے سوالات، اس ٹائپ کے سوالات تو بہت ہی، یعنی اس کا کوئی سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے نا. زاویہ پروگرام کا تعلق سیاست اور انٹرنیشنل افیئرس سے ہے، تو ان کا تعلق تو فقہی احکام سے ہے، تو یہاں پوچھے جا سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب دیکھیے یہ ٹائپ مثلا سوال جیسے شاید ہماری طرف آ جائے، یہ اچھا ہے. اب جیسے لکھا ہے، عمران خان کی حکومت میں انتہا پسندوں اور فرقہ واریت کو کہاں دیکھتے ہیں، اور بڑھنے کا چانس ہے یا اکانومی کے لیے بہتر ہوگا؟ اکانومی کے لیے تو میں نے بتا دیا کہ بہتر ہوگا. اب یہ مسئلہ ہے کہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، تو پھر اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب فرقہ واریت کور ایشو، جب فرقہ واریت اور انتہا پسندی بڑھ رہی تھی، تو اسٹیٹ کی سپورٹ اس کو تھی یا نہیں تھی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ تھی، اسٹیٹ کی سپورٹ تھی اس فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو. اچھا، اگر اسٹیٹ سپورٹ نہیں کرے تو بڑھے گی؟ نہیں، پھر چاہے عمران خان صاحب بھی آئیں تب بھی نہیں بڑھے گی، پھر بھی نہیں بڑھے گی. نشانی کیا ہے؟ نشانی ایک چھوٹی سی نشانی دیکھیے کس طرح ہماری اسٹیٹ ہم سے کھیل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو ملک اسحاق سے یاد ہے؟ ہاں، اگر آپ پنجاب میں ہوتے تو آپ ہوں نہیں کرتے سر، آپ کو بہت کچھ یاد آ جاتا فوراً کہ وہ کیا تورم خان آدمی تھا، اور اس نے کتنی دہشت گردی مچائی تھی، اور کیا مصیبتیں اس نے مچا دی تھیں. صحیح ہے، یہ آدمی اپنے تقریباً 18 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں اس کے ڈپٹیز بھی شامل تھے، جس میں اس کے بچے بھی شامل تھے، لڑکے بھی شامل تھے، ایک پوائنٹ کے اوپر حکومتی اداروں کے ہاتھوں صاف ہوئے ہیں، مرے ہیں. وہ صاف ہوئے تو بہت سارے بچے تو بعد میں سمجھیں گے شاید انہوں نے کوئی پالش والش کر دی تھی، ان کو صاف کر دیا نہیں، مار دیا تھا ان کو، فائرنگ کر کے مار دیا تھا. 18 کے قریب بندے جس میں اس کے ڈپٹیز اور اس کے اپنے لڑکے شامل ہیں، سب ختم ہو گئے تھے. اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس انسیڈنٹ کی جگہ سے تھوڑے فاصلے پر ملتان میں تھے، اور ہمیں ملتان سے واپس آنا تھا سپر ہائی وے پہ، ظاہر ہے وہ روڈ کے اوپر، اور ان کا جنازہ اٹھنا تھا، اور جنازہ بھی جمعے کا دن اٹھنا تھا، اور ہمیں اسی دن جس دن ان کا جنازہ اٹھنا تھا اس روڈ کے سامنے سے گزرنا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ خوب بلوا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ٹائرنٹ ٹائپ کا آدمی تھا، اور یہ تو اس کے اتنے سپورٹر، اتنے فالوور، یہ اور وہ. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہماری جو دوست احباب جو اسٹیٹ والے تھے، مثلا کچھ دوست جو وہاں ایڈمنسٹریشن میں تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا کچھ نہیں ہوگا، اب کراس کریں. اب میں کہہ رہا تھا بھائی رسک ہے، میں اس روڈ پہ جاؤں گا، میں جمعے سے پہلے اس کو کراس نہیں کر پاؤں گا اس کے ٹاؤن کو، مجھے جمعے تک شاید لگ جائے گا، اور جمعے کے بعد یہ لوگ خوب بلوا کریں گے. انہوں نے کہا مولانا روڈ بلاک نہیں ہوگی، اب جائیں. دے وار سو کانفیڈنٹ. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے. तो अब आप ये कह रहे हैं ना कि इनके इमरान खान के आने से इंतहा पसंदी और फिर कवायद बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अगर ऊपर वाले नहीं चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, और मेरा अपने ख्याल है वो नहीं चाह रहे अभी, इसलिए नहीं बढ़ेगी। वो लोग कुछ इरादे करते हैं, वो अपना कुछ प्लान बनाते हैं और उस पर प्लान बना के एग्जीक्यूट कर देते हैं। अलबत्ता अगर आप उनसे पूछें ना तो वो उसके पीछे आपको ऐसे ऐसे कौमी फ़ायदे बताएंगे कि आप कभी दिल चाहेगा कि यार मैं भी इसका हिस्सा बन जाता, ऐसे ऐसे कौमी फ़ायदे बताएंगे। तो मसलन कभी मसलन कोई फ़र्ज़ करें हमारे अहले बैत के मसलन चाहने वाले शिया मसलन कोई गए उनसे बात बात करने और उनसे कहा कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं और आप एक ख़ास फ़िरके की हिमायत इतनी ज़्यादा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपसे शिकवा करते हैं कि आप हमारा साथ क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा भाई कैसी बात कह रहे हैं, हम आपका क्या साथ दें। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में जब कोई काम पेश आता है आपके फ़िरके का कोई बंदा आता है जो हमारे साथ खड़ा हो, इस फ़िरके के लोग खड़े होते हैं हमारे साथ, ये कश्मीर में जाते हैं, ये अफ़गानिस्तान में जाते हैं, आप लोग जाते हैं? जब आप नहीं जाते तो आप बताएं हम किसका साथ देंगे। इस्टैब्लिशमेंट तो इस तरह शिकवे करती है, फिर अब आप उसको क्या बताएं कि भाई हमारे दीन में बेगुनाह इंसान को मारना मुमकिन नहीं है, ये जो तुम जिहाद के नाम पे लड़ाते रहते हो बढ़ाते रहते हो, ये जिहाद हमारे हमारे मजहब में इस तरह से जिहाद ऐलान नहीं होते हैं, मुझे उनको समझाना मुश्किल पड़ जाता है। वो तो अपनी एक आर्गूमेंट बनाते हैं, आर्गूमेंट बना के उनके दिमाग में आती है, वो कहते हैं चलो बस ख़त्म हो गया शुरू कर दो। तो ये मसाइल हैं, ये बहुत पेचीदा यहाँ पे गेम चल रहे होते हैं, इतना सादा नहीं होता। तो इमरान साहब के इमरान खान साहब के आने से मेरा नहीं ख्याल फ़िरका वारियत बुनियाद परस्ती फैलेगी, इससे नहीं फैलेगी, मेरा अपने ख्याल। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो मौलाना साहब तशरीफ़ फरमा थे, अब तो वहाँ पे शायद ब्रेक के लिए किसी वजह से गए। मौलाना साहब की सेहत व सलामती के लिए जितने उलमा यहाँ पर मौजूद हैं टोरंटो में, उन सब की सेहत व सलामती के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद वाले में। लग रहा है इन्होंने फरमाया बेज़ाहिर यूँ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे हट रहा है, अगर ऐसा है तो दिफाए पाकिस्तान के लिए क्या इकदाम किए गए? यही तो मैंने आपकी खदमत में अर्ज़ किया था कि भाई नेशनल इंटरेस्ट आपके क्या हैं, स्ट्रेटजिक एसेट्स आपके क्या हैं, वो एक ज़माने में एटॉमिक एनर्जी थी, इसी तरह एक ज़माने में आपके स्ट्रेटजिक नेशनल इंटरेस्ट एसेट्स मिलिटेंसी में भी थे, उसके बाद ये सब रीडिफाइन हुए हैं। पाकिस्तान अपनी एटॉमिक एनर्जी को प्रैक्टिकली अब वो अहमियत नहीं दे रहा। अच्छा, अब जाहिर है मेरे जैसा आदमी अगर ज़रा सी अपनी ज़बान को कंट्रोल ना करे तो वो बोल देगा कि मसलन पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी को रोल बैक कर दिया, सही है? तो फिर बाद में मुझे कोई पकड़ लेगा, भाई आपके पास रोल बैक का क्या सबूत है, सही है? तो फिर हम लोगों को ज़बान से अपनी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ना जिसके ऊपर बाद में कोई पूछे भाई आपने क्यों कहा, तो फिर आप फंस जाएँ कि भाई ये क्या कह दिया मैंने, हमें क्या पता रोल बैक किया नहीं किया। हाँ, इतना हमें पता है कि अब एटॉमिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, शायद एक वजह मसलन वो बयान कर रहे हैं कि भाई दुनिया ने थ्रू एक्सपीरियंस इस बात को देख लिया है कि एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक जंग लड़ने की है ही नहीं, और इंडिया भी पीछे हट गया, हम भी पीछे हट गए, हम तो उसके मुकाबले में आए थे, तो उन्होंने चूंकि बम धमाके किए थे तो हमने भी बम धमाके किए, उन्होंने लिया था तो हमने भी ले लिया, जब वो पीछे हट गए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम भी पीछे हट गए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ख़त्म हो गया मामला। तो उन्होंने बिज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपने नेशनल एसेट्स को स्ट्रेटेजिक एसेट्स को रीडिफाइन किया है और अब एटॉमिक एनर्जी को वो नेशनल एसेट के तौर पर डील नहीं कर रहे, अब वो किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे। अच्छा, पीछे भी है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा देखिए, बाद वक़्त क्या होता है, सवाल करने वाला कुछ ऐसा सवाल करता है कि उसे मर्जी का जवाब मिले, सही। अच्छा, हम लोग भी जिसे कहते हैं घाट घाट का पानी पिए हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ का पानी नहीं पिया मैंने अभी, लेकिन बहरहाल घाट घाट के पानी पिए हुए होते हैं, तो हम लोगों को सवाल पढ़ने की महारत। देखिए ना, मैं किस कॉन्फिडेंस से आपके सामने सवाल लेके बैठ रहा हूँ और बैठ के अब यहाँ पढ़ भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, और मुझे कोई गलत सवाल भी नहीं पढ़ना है और गलत जवाब भी नहीं देना है। तो इसकी वजह क्या है, चूँकि मुझे ये काम करते हुए बहुत मुद्दत हो गई है, सही। अब अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो मेरे एंटीनास फौरन अलर्ट कर देते हैं कि भाई ये जो है कहीं फंसाने वाला ना हो कोई, ऐसा हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, बाद लिखने वाले ने बड़ी खलूस और बहुत मोहब्बत के साथ अच्छा सवाल लिखा होता है, लेकिन वो टर्न ऐसा हो जाता है। अब देखिए सवाल, देखिए नज़ारे, अब ये ट्रेनिंग इसे कहते हैं ना, आदमी ट्रेन होता है फिर। पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते हैं, क्या वो इस्लामी कवानीन पे पूरा उतरते हैं? अच्छा आप मुझे ख़ुद बताइए, कोई ये सवाल पूछ के वाकयान मुझसे जवाब लेना चाह रहा है क्या? यानी कोई चांस है कि पूरे उतरते हों? भाई पाकिस्तान इस्लाम पे पूरा नहीं उतर रहा है, तो ये कवानीन कहाँ पूरे उतरे? वो भी इंतखाबात जैसा गेम। यहाँ पे इंतखाबात तो है ही धांधली का गेम, है ही फ्रॉड का गेम, यहाँ पे कौन इस्लाम को पूछ रहा है? अच्छा आप पूछा पहले सवाल, पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते हैं क्या वो इस्लामी कवानीन पे पूरा उतरते हैं? अब जाहिर है कि मैंने जवाब में कहना है नहीं। फिर दूसरा, मसलन जो उम्मीदवार खड़े होते हैं क्या वो इस्लामी तर्ज अमल और कवानीन के लिहाज से पूरे उतरते हैं? भैया इसमें नवाज शरीफ भी खड़ा हुआ था, ज़रा एहतराम से पूछो। वो सबको मालूम है कि नहीं। अच्छा ये दो नहीं निकलवाने के बाद अब जाहिर है कि नहीं तीसरे पे आना है। तो अगर नहीं, अगर नहीं, दैट इज फनी, अगर नहीं तो क्या हम अहले बैत के मानने वालों को इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए? शुक्रिया। अगर नहीं, दैट इज फनी भाई। अब हम देखो, हमें भी पता है कि क्या हो रहा है। अब इस तरह मत कहो, देखो थोड़ा सा यानी तरीके से लेकर आओ मामले को। मामला ये नहीं है। अब जवाब क्या है इसका? मुमकिन को बाद में क्या भाई जवाब तो नहीं दिया। जवाब ये है कि भाई हमें बहुत सारी जगहों के ऊपर मालूम होता है कि मामला इस्लाम और कुफर का नहीं है, यहाँ पर मामला कोई और मसलहत में आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मिक्स गैदरिंग में बैठना सही होता है? नहीं। तो अगर कोई मिक्स गैदरिंग में बैठे तो क्या वो सवाब का काम होता है? नहीं होता। तो क्या जहाज़ में बैठना सही है? फंस गए। अब बताओ जहाज में बैठे बगैर आगे दिखाओ कनाडा मुझे। तो देखो ऐसे नहीं होता, देखो ये तो सब ऐसे ही तो गेम्स होते हैं ना। आप इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकली मुगालता, मुगालता कि आप इसको ऐसे दिखा देते। बहरहाल अच्छा किस जिसने लिखा होगा ऐसे, मैं नहीं कह रहा कि उसने डेलिब्रेटली लिखा होगा, बस बहुत खुलूस से लिख रहे होते हैं ना, उनको एहसास भी नहीं होता कि अब क्या हो रहा है, लेकिन ये इस तरह हो जाता है। फिर इस तरह हो जाता है फिर उसको, हम लोगों का तो काम ही है ना, लिखने वाले ने इसीलिए हमारे पास भेजा होगा कि भाई आप ज़रा देखो इसको। मुमकिन है उसको किसी ने इस तरह सवाल बना के भेज दिया हो, तो जिसने लिखा है वो ये ना सोचे कि मैं उसको डिनाउंस कर रहा हूँ। नहीं, मुमकिन है कि उनको सवाल ऐसा आया, उन्होंने मेरे पास भेज दिया। अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे होता है। बार अब देखिए एक और सवाल मंजदार, क्या जमहूरियत की इस्लाम में गुंजाइश है? कहते हैं कि अहमदी निजात को वली फ़कीह ही ने मुंतखब किया था, क्या पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर है कि उसे जमहूरियत के अमल से गुजारे? अच्छा मसला क्या है कि मसलन अब ये जो सवाल हैं, अब तीन सवाल हो गए, इनमें पहला सवाल इसके ऊपर इतना लेंदी डिस्कशन खुद बड़े बड़े स्कॉलर्स ने किया है, जैसे जैसे आयतुल्ला मिसबाह यज़दी ने, कि इस्लाम और डेमोक्रेसी का जो रिलेशनशिप है वो क्या रिलेशनशिप है? आया मसलन इस्लाम के अंदर जमहूरियत असरन आ सकती है या नहीं आ सकती? एक दो तो इन बातें होती हैं ना, एक दफ़ा हम कहते हैं इस्लाम और जमहूरियत एक ही है, ये तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी शबाहत निकालते हैं और कहते हैं ये वही है। मसलन इस्लाम में इंसान की आज़ादी को अहमियत है, बस इसका मतलब है इस्लाम डेमोक्रेसी है, इतनी आसानी से। जिस ज़माने में 70s 80s में कम्युनिज्म सोशलिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो वो कहते थे इस्लाम में भी गरीबों के हकूक़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसका मतलब है इस्लाम नेशनलिज्म सोशलिज्म। तो इतना ज़रा ज़रा सी शबाहत पे अगर लेके चले ना, तो फिर दुनिया का कोई भी टाइटल किसी पे भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं ये आदमी खंबा है, भाई क्या ये वाकई खंबा है, इसमें तार लगे हुए नहीं, लंबा है इसलिए कह रहे हैं खंबा। तो अब ऐसे थोड़ी होता है कि भाई आइडियोलॉजीज़ में आप ऐसे नहीं कर सकते, आप शायरी में कर सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी को ज़रा देख दाख के करना होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा शबाहत चाहिए होती है, फिर आप ये कहेंगे ये वो ही है। तो इस्लाम में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी से मिलते जुलते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी से नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर अपेरेंटली, फिर मैं कह रहा हूँ वही लंबे खंबे वाली कहानी, मतलब कोई ये कहे कि भाई ये जो इमामत है नाउज़ुबिल्ला सद नाउज़ुबिल्ला, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। मुमकिन है कोई कह बैठे, जैसे कह रहे हैं मसलन कह रहे हैं वली फ़कीह तो डिक्टेटरशिप हो गई। हाँ अगर आप ये देख रहे हैं एक आदमी है जिसके पास हक है कि वो बोले, तो वो उसके पास आप कह रहे हैं बस यही डिक्टेटरशिप होती है। नहीं भाई, डिक्टेटरशिप वहाँ होती है जहाँ किसी के पास हक नहीं होता, फिर वो चौधराहट कर रहा होता है। ایک دفعہ کسی کو خدا نے حق دیا ہوتا ہے وہ کچھ کرے، اپنا حق کو استعمال کرے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، یہ گائیڈنس ہوتی ہے پھر. تو بہت فرق ہوتا ہے نا، سادہ سادہ شباہتوں کے اوپر ہم آئیڈیالوجیز کو ایک دوسرے سے ٹائٹل نہیں دے سکتے، اس طرح سے ٹائٹل نہیں دے سکتے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. تو اب یہ سوال بہت انٹرسٹنگ ہے، اب جیسے یہ سوال ہے نا بہت انٹرسٹنگ، کیا پاکستانی قوم اتنی باشعور ہے کہ جمہوریت کے عمل سے گزاریں؟ تو مثلا دوسرا آپشن کیا ہے، تو ڈنڈے سے گزار لیتے ہیں. دوسرا آپشن کہ بھائی جمہوریت کے عمل سے نہیں گزار، ڈنڈے سے گزار لیتے ہیں. تو بعض لوگ واقعاً معتقد ہیں کہ پاکستان میں ڈنڈا ہی چلے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں جمہوریت کچھ نہیں چلے گی، یہاں ایک ڈنڈا ہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کہیں کہ بھائی ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ ڈنڈے سے ہی چلیں گے، تو چلاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ڈنڈے سے چلے، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو ڈنڈے سے چلے. قوم ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس کو حق کے انتخاب نہیں دیں گے. قوموں کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور مثال کے طور پر پاکستان کی جو بہت پرانی کچھ ڈرامے ہیں اس ٹائپ کے، جس میں قوم کو غلط انتخاب دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی چلنے والی نہیں ہے. آپ تصور کریں، دیکھیے اب اس بات کو، ہمارے پاس تقریباً 30 سال تک حق کے انتخاب دو پارٹیز کے درمیان تھا اور دونوں کرپٹ تھیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے رزلٹ یہ نکل رہا تھا کہ ڈیموکریسی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اچانک ایک تھرڈ آپشن آ گیا، اب ڈیموکریسی انڈر کوشچن کیوں نہیں ہے؟ ایک دم سے ڈیموکریسی کو ویلیڈیٹی مل گئی، ایک دم سے اس کو ایک آرگومنٹ مل گیا. اور پہلے کیا تھا، ڈیموکریسی کے اوپر بڑا سا کوشچن مارک لگا تھا، کیوں؟ ڈیموکریسی مینس نواز شریف بے نظیر، اور یہ دونوں کرپٹ جا رہے تھے. اچھا اگر کوئی کر ہی یہی رہا ہو کہ تھرڈ آپشن کینسل کرتا جا رہا ہو تاکہ یہی دو رہیں، تو وہ اپنے اس کام کے ذریعے ڈیموکریسی کو شکست دے رہا تھا بار بار. اور وہ ڈیموکریسی کو کیوں شکست دے رہا تھا؟ تاکہ اس کے حکومت پہ آنے کے لیے جواز رہے. تو پاکستان کے 70 سال میں آدھے ٹائم پہ وہ ادر پاور جو تھی وہ حکومت میں رہی. کیوں؟ وہ کہتا ہے ڈیموکریسی چلتی نہیں، اس لیے ہم کو آنا پڑتا ہے. اور ڈیموکریسی چلے گی کیسے جب تم تھرڈ آپشن بار بار کاٹتے رہو گے، شرفا کو آنے کا موقع ہی نہیں دو گے. صحیح، یہ ڈیپتھ ہوتی ہے، اس ڈیپتھ سے کام ہوتے. بس یہ کوشچن صرف نظریاتی کوشچن نہیں ہوتے، ان کے پیچھے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے، سنس عمران خان کیم ٹو پاور ہز کلوز ٹائز ود سعودیز اینڈ سعودیز ایکسٹریم پروٹوکول ایز کمپیئرڈ ٹو دیئر پوئر ٹریٹمنٹ آف نواز شریف، وٹ از دس کانٹراسٹ انڈیکیٹس؟ آئی تھنک تو اس میں یہ تھا کہ مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں نے کہیں اور بھی یہ سوال کیا تھا، اور مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مثلا امریکن سسٹم عیسائی ہے، کرسچن ہے؟ کیا مثلا کیا سعودی واقعاً وہابی ہیں؟ نہیں. یہ کس سے لائل ہیں؟ اپنی حکومت سے، چاہے وہ سعودی حکومت وہابیت سے آئے یا غیر وہابیت سے آئے، انہیں اس سے کیا سروکار؟ اچھا یہ وہ نہیں جو 70 سال سے وہابیت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ہاں کر رہے تھے جب تک حکومت مل رہی تھی اس کے ذریعے، اس سے کر رہے تھے، کل کسی اور ذریعے سے ملی اس کو بھی کریں گے. ابھی محمد بن سلمان کیوں وہابیت سے نکل رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے اب مجھے حکومت وہاں سے نہیں ملے گی، حکومت کہیں اور سے ملے گی، اس کو کرے گا. یہ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں یہ مامون الرشید کی طرح ہوتے ہیں، یہ ہارون الرشید کی طرح ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں بھائی یہ امام ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومت میری ہے. یہی وہ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں، تمہاری بھی آنکھیں نکال دوں گا، اپنے بیٹے کو بولتا. یہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کا، اس ٹائپ کے حکمرانوں کا دین نہیں ہوتا، ان کا دین ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے، ان کی اپنی دولت ہوتی ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے. تو ان کو دین کو صرف استعمال کرنا ہوتا ہے. سعودیز جو ہیں وہ اچھا اسی طریقے سے میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، مثلا یہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا کوئی دوست ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ان کا کوئی دشمن ہوتا ہے کیا؟ وہ بھی نہیں. ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس انٹرسٹ کی خاطر کبھی کسی کو دوست بناتے ہیں، کبھی کسی کو دشمن بناتے ہیں. یہی جو جمال خشوگی جس کے مرنے پہ اتنا بلوا ہوا ہوا ہے، یہ ایک زمانے میں کیا تھا؟ اصلا جب اس کا نام آیا نا، تو میں پہلی دفعہ جب اس کا نام پڑھا کہ اس طرح ہوا، جیسے ہی اس کا میں نے فیملی نیم پڑھا جو خود ہی ڈسپیوٹڈ ہو گیا کہ بھائی وہ خشوجی ہے، خشوجگی ہے، کاچکچی ہے، کیا ہے وہ؟ تو قدیم زمانے میں اس کا خشوگی کہتے تھے اس کو. तो जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने अपने बच्चों से कहा कि देखो अब ये सारा पीटेंगे पीटेंगे और ये नहीं बता रहे कि इसका अदनान खुशुगी से क्या ताल्लुक है। अदनान खुशुगी सबके बड़ा, सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर था, वो जमाल खुशुगी का चचा था। ये फैमिली सर्वेंट रही है आले सऊद की, इन्होंने सर्व किया आले सऊद को, इससे कमाया, उनको कमा के दिया, उनके बेनिफिट्स पूरे करवाए, डीलिंग की है, सब कुछ किया है। बिन लादिन वाला केस है ये भाई। अब जाहिर है वो पेज खोल के नहीं दे रहे, पता नहीं कितने अरसे तक ये दबाते रहे, उसका अदनान खुशुगी के साथ ताल्लुक दिखाया ही नहीं इन लोगों ने। ये तो मैं बता रहा हूँ, फैमिली नेम के अंदर ही उलझा के रख दिया कि भाई वो खुशुगी का प्रोनाउंसिएशन असल में है क्या। तो ये इनका काम है, एक्सपर्ट्स हैं इस काम के। तो मेरा अपने ख्याल है कि लॉयल्टी इनकी किसी चीज़ से लॉयल्टी नहीं होती, ना इनका कोई दोस्त होता है ना इनका दुश्मन होता है, इनको अपनी हुकूमत चाहिए होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं से भी मिलेगी वो रखेंगे उसको। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्होंने कुछ इवेंट्स लिखे हैं, जैसे उस यमनी पोर्ट के ऊपर हमला रुक गया, जमाल के कत्ल का मामला खुल गया, क्या ये यमन में अमन का पेश खेमा हो सकता है? सऊदी हुकूमत, बादशाह सलमान के भाई का आ जाना ये सऊदी हुकूमत को कमज़ोर करेगी। एक बात थी कि आया मोहम्मद बिन सलमान जाएगा या नहीं जाएगा, सब आज जो ट्रंप ने बयान दिया उसने खुल कर उसकी हिमायत कर दी है कि नहीं वो हम उसकी हिमायत करेंगे, और उसको असल में उसको अपने एसेट के तौर पर वो डील कर रहा है, चूँकि बिल्कुल क्लियर है ज़ायोनिस्ट मोहम्मद बिन सलमान को अपना बहुत इंपॉर्टेंट एसेट समझते हैं, क्योंकि ये वो बरसों के बाद वाहिद बादशाह आया है जिसने सहयूनी हुकूमत के साथ खुले ताल्लुकात को सपोर्ट किया है, तो वो अपने इस एसेट को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और ट्रंप साहब जाहिर है कि सहयूनी से हटकर बहुत बड़ा कोई कदम नहीं उठा पाएंगे, उनको इसको देख के रखना होगा। तो उन्होंने अभी भी सपोर्ट किया मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन यह है कि बहरहाल सऊदी अरब के अंदर जो ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, गरचे इस वेट डालने से बहुत बहुत सारे सऊदी दब जाएंगे, क्योंकि जैसे वो देखेंगे ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को स्टिल सपोर्ट कर रहा है तो वो एकदम से दबने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि सऊदीया में अभी भी नारजायती और मुखालिफत मोहम्मद बिन सलमान की इतनी सब्सटेंशियल है कि ट्रंप के इस सपोर्ट करने के बावजूद वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रामा चलेगा। अभी बहुत सारे चांस हैं। ये भी चांस है कि मोहम्मद बिन सलमान ने किसी और जगह के ऊपर कोई और चीज़ सरेंडर की हो ट्रंप के सामने, जिसके बाद ये बार्गेन कंप्लीट हो गई हो, और वो जो बादशाह के भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज़ को भेजा था वो भेजा इसीलिए हो कि मोहम्मद और ज़्यादा बार्गेन के अंदर तैयार हो जाए, और अब ये जितने भी मुखालिफिन थे मोहम्मद के उसको और टफ टाइम देंगे। ये भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि अंदर जो मुखालफत है वो अब सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर मौजूद है, और इसको दबाना इतनी आसानी से मुमकिन नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है गेम चलेगा। अभी ये जो CIA ने मोहम्मद के ख़िलाफ़ बयान दिया था और इसने मोहम्मद की हिमायत में बयान दिया है, गेम इज़ नॉट ओवर, ये अभी चल रहा है, तो अभी ये और चलेगा मेरा अपने ख्याल है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सवाल किया कि यमन के मुसलमानों की मदद कैसे की जाए, सिर्फ ज़बानी कलामी मदद से इनको तो कोई फ़ायदा नहीं, अमली इकदाम क्या हो सकते हैं? देखिए साहब, एक अमली इकदाम हो सकता है जिसके कहने पे ना मैं रहूँगा ना आप रहेंगे, सही है, और उसको कहना भी फजूल है और आप करेंगे भी नहीं, मैं भी नहीं करूँगा। और दूसरा जो अमली इकदाम है वो ये कि आप फाइनेंसिस में थोड़ा सपोर्ट कर लें। तो अब कुछ चैनल्स बने हैं, जैसे हमारे यहाँ दोस्त अहबाब भी मेरे ख्याल में कुछ कंपेन चला रहे हैं, और स्पेशली मैं मतलब UK में जो एम्स है, लेडी फातमा ट्रस्ट है, उन लोगों ने कुछ चैनल्स वहाँ पे क्रिएट किए हैं जिससे यमन के लोगों को ऐसी मदद मिल जाए जिससे वो खाने पीने की ज़रूरतों को कम से कम पूरा कर लें। मेरा अपने ख्याल है, मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन में कहा उसकी यमनियों को हमारी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है। जो यमनियों का जो असली मसला जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है वो पब्लिक के लेवल के ऊपर है। पब्लिक के लेवल के ऊपर जो भूख, इफ़लास, दवाइयों की कमी, उसको डील करना उनका असली मसला है। बाकी जंग जदाल में वो किसी से पीछे नहीं है, उनको इसका कोई मसला मेरे ख्याल में नहीं है। तो जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम मसलन खाने पीने के मामले में, दवाइयों के मामले में उनकी पब्लिक को सपोर्ट करें, और ये वो है जो पॉसिबल भी है, और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसको फेवर भी कर रहे हैं। तो मसलन मैंने अर्ज़ किया कि जैसे लंदन में लेडी फातमा ट्रस्ट है, उसने कुछ काम किया है, और कुछ इदारों ने वहाँ पर काम किया जो जिनके साथ यहाँ के दोस्तों ने भी कोऑर्डिनेशन की है। तो आप देख लें, इसको देखते हुए फिर आप सपोर्ट कर सकते हैं उनको। हाँ, अब ये सवाल है, एक और मजेदार सवाल, हाउ इज दी एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म्ड, हाउ डू दे गेट लेजिटिमेसी, डिक्टेटिंग देम आई थिंक हाउ दे इन्फ्लुएंस. अच्छा, इन सब में से जो जवाब देने के काबिल है वो सिर्फ आखिरी है, बाकी जवाब देने के काबिल नहीं है कि वो कैसे बनते हैं और इनकी लेजिटिमेसी कहाँ से आती है. देखिए एक बहुत सादा सी बात है, जिसके हाथ में ताकत हो वो लेजिटिमेसी का इंतज़ार नहीं करता. जिसके पास ताकत है वो ये नहीं पूछता कि कोई मुझे लेजिटिमेट राइट देगा या नहीं देगा. जब ताकत होती है तो वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा होता है. कैसे? जैसे आप खुद अपने घर में करते हैं बात अवकात. जब आपके पास ताकत होती है तो आप ताकत इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आप ये पूछ के करते हैं कि खुदा ने मुझे कितनी ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, कितनी नहीं दी थी, क्या था क्यों था, ये सब नहीं कर रहे होते. तो मामूलन जब हम इस तरह के केसेस में जाते हैं तो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन इन लोगों के नज़दीक नहीं होता. लेजिटिमेसी का मतलब क्या है? कोई कानूनी हक जिसको हम लोग कहते हैं, तो कानूनी का मसला नहीं होता. हाँ, ये क्वेश्चन है कि फॉर्म कैसे होती है. फॉर्म, अब मैंने कहा था मैं सवाल जवाब देने काबिल नहीं है, लेकिन फिर मैं दे रहा हूँ. फॉर्म ऐसे होती है कि भाई जब आप एक कंट्री के अंदर ताकत को एक जगह पे कंसंट्रेटेड देखते हैं तो यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो जाती है. तो मिसाल के तौर पर ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमेरिका में जो आर्टिस्ट लोग हैं इनको ऐसी ताकत हासिल है जो हुकूमत को ओवर रूल कर सकें? नहीं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं है. अच्छा, अमेरिका में जो पैसे वाले हैं उनको ऐसी ताकत हासिल है कि वो हुकूमत को ओवर रूल कर सकें? है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाएंगे. अच्छा, पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस को ये ताकत हासिल है कि वो गवर्नमेंट को ओवर रूल कर सकें? है, तो बस ये इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाएंगे. ताकत का इर्तिकास, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये वो क्रिएट करती है जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं. और ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है. कुछ के यहाँ मसलन पहले दिन से बन जाती है, कुछ के यहाँ थ्रू टाइम्स बनती है, गुजरते 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 बनती है. कुछ जब एक दफ़ा बन जाती है तो वो इसको हिलने ही नहीं देते, फिर कहीं और नहीं जाने देते. मिसाल के तौर पर क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर आर्म फोर्सेस इतनी ताकत रखते हैं कि गवर्नमेंट को ओवर रूल कर सकें? बहरन ऐसा नहीं होता है. तो इसका मतलब है यहाँ जो दूसरी वाली पावर है उसने अपने इन्फ्लुएंस को इतना पक्का कर लिया है कि कोई और इसमें दखालत ना दे सके. तो ये इस तरह से काम होता है. डिसेप्शन भी फिर इसी तरीके से होता है. इन्फ्लुएंस के फिर बहुत सारे उनके पास तरीके आ जाते हैं. ये खाली आ गया, ये खाली मेरे ख्याल में इस काम का क्या मतलब होता है? इसका खाली का मतलब होता है बहुत देर हो गई है, बस करो. लेकिन इसमें कुछ लिखे हुए भी आ रहे हैं तो मैं कुछ लिखे वाले को देख लेता हूँ. दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद पर. ये भी खाली है. लिखा है कि मसलन उन्होंने नाम लिखा है एक वज़ीर दिफा का अमेरिका के, जिनको हम वज़ीर जंग कहते हैं. 30 दिन की मोहलत दी यमन जंग बंदी के सिलसिले में. इसके पीछे क्या मकासद हैं? कैसा हो सकता है? हाँ, एक बात हो सकती है वो ये कि सऊदियों ने ये कबूल कर लिया हो कि भाई हम ये जंग नहीं जीत सकते और हम यहाँ पर हमारी नाक कट गई. सही है. अब उन्होंने अमेरिकन से कहा हो कि ऐसा करो तुम लोग हमें धमकी दो ताकि हम तुम्हारी धमकी के नाम पर बाहर निकल आएंगे. इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस सेविंग. कि यार चलो तुम ऐसा करो तो हमें धमकी दे दो. वह हम कराची में ये रूटीन है. कराची में रूटीन क्या है? मतलब एक आदमी है, उसने क्या किया कि एक बिल्डिंग बना रहा था. वो बिल्डिंग बना रहा था तो उस बिल्डिंग में 20 अपार्टमेंट थे. उसने 20 अपार्टमेंट बेच दिए. अच्छा, जब पब्लिक से ले लिया उसने पैसा, अब जो पैसा लिया तो किसी भी वजह से उसकी कैलकुलेशन ख़राब हो गई या नीयत ख़राब हो गई. तो उसने सोचा कि मुझे नहीं देना है. तो उसने क्या किया, उसने एक और बिल्डर से कहा कि तुम मेरे इस अपार्टमेंट की ज़मीन पे केस कर दो कि तुम्हारा है ये. केस हो गया तो स्टे ऑर्डर ले लिया उसने. स्टे ऑर्डर ले लिया, अब ये जो बिल्डर है ये बैठा है, कह रहा है भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अदालत ने केस आ गया. अभी केस कितने अरसे चलेगा? 15-20 साल तो चलता ही है. फिर तो अब आप हमें पैसा दे दो, तो कह रहे हैं मेरा तो पैसा लग चुका है, तो तुम देखो बिल्डिंग तो बन रही है ना, हमें क्या करूँ. फेस सेविंग के लिए बड़े ड्रामे होते हैं. तो मेरा अपने ख्याल है कि सऊदियों ने ये रियलाइज़ किया है कि यमन की जंग हम नहीं जीत पाएंगे और हमारे पास कोई रास्ता है नहीं. इन्होंने कोई रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? भाई पहले जब अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा कि मत करो तो क्या किया? माना. जब मुसलमानों ने कहा मत करो तो नहीं माना. तो अब कोई इन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जिसको बीच में डालकर अपनी फेस सेविंग करें. एक प्लेटफॉर्म रह गए हैं वो अमेरिका साहब. तो मुमकिन है कि उनसे कहा हो कि भाई तुम आओ और तुम हमको धमकी दो और हम कहेंगे मसलन हम किस तुम्हारी धमकी की वजह से आ गए, वरना तप्पड़ तो हमें बहुत था, हम जीतने वाले थे बिल्कुल. वो जो हमारे यहाँ बचपन में बच्चे लड़ते थे ना, एक दूसरे का गिरेवान पकड़े खड़े हो कहते पहले तू छोड़ फिर मैं छोड़ूंगा. तो अभी सऊदी भी यही ड्रामा कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मैं छोड़ने वाला हूँ छोड़ने वाला हूँ। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, मेरा अपना ये ख्याल है। मेरे ख्याल में ये यमनी जंग रुकेगी, मेरा अपने ख्याल है यमनी जंग बहुत जल्दी रुक जानी चाहिए, मेरा अपने ख्याल है। हाँ ये बात है कि हॉस्टैलिटी ख़त्म नहीं होगी, ये सऊदियों की जंग तो शायद कहीं रुक जाएगी, लेकिन ये लोग हौसियों को आराम से नहीं बैठने देंगे, ये हॉस्टैलिटी अंदर अंदर जारी रखेंगे। इस मुल्क को सिविल वॉर ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, अफगानिस्तान का केस हमारे सामने है। एक दफ़ा जंगें शहरों तक पहुँच जाती हैं सिविल वॉर में, फिर ख़त्म नहीं होती, बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। बहुत एक्सेप्शनल होता है कि जंगें अंदर तक चली जाएँ और फिर वाइंड अप हो जाएँ, मतलब कैसे जैसे बोस्निया के अंदर, लेकिन उसमें भी 10-15 साल लग जाते हैं, 10-15 साल कहीं नहीं जाते। हाँ यमनियों का चूँकि सबका पहले से ही बहुत ज़्यादा असलहे वगैरह का है, तो शायद ये लोग 5-10 साल में वाइंड अप करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन मामूलन ऐसा होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मुल्क अभी लंबी मुद्दत के लिए मुश्किल में रहेगा, कम से कम ये इन्वेजन ख़त्म हो जाए इससे भी बेहतर हो जाएगा। लिखा है पाकिस्तान के बेहतर हालात देखते हुए कि हम बाहर रहने वाले सोच सकते हैं कि पलट कर जाएं। हाँ बाहर रहने वाले तो फिर ना ही सोचें, फिर बेहतर है। देखो ना फिर सबसे बड़ा मसला क्या है, ये जो दो बातें, अगर किसी को वापस जाना है, नंबर एक बहुत अच्छा प्लान करें, बहुत अच्छा प्लान करें। नंबर दो नखरेबाजियाँ बंद करें, ये नखरों के साथ वापस नहीं जाया जाता। नखरेबाजी क्या, देखो कितना अजीब है, मुझे एक बंदा मिलता है यहाँ पे या कहीं पर भी, अच्छा वो कहता है मौलाना हमें तो ताज्जुब है आप लोग वहाँ कैसे रह रहे हैं। सही, अभी भाई 10 साल पहले तक वहीं रहता था, अभी मुझे बोल रहा है कि हमें ताज्जुब है कि आप वहाँ कैसे रह रहे हैं। अब भाई तू कहाँ पैदा हुआ था, वहीं पैदा हुआ था, वहीं पे तू पला है बड़ा है सारे काम हुए, अब मेरे पे ताज्जुब कर रहा है कि मैं वहाँ पे कैसे रहता, शोबाजी कर रहा है ना ये। तो यार ये शोबाजियाँ मत करो, क्यों अपने आप को छोटा कर रहे हो, तुमने सिर्फ जुमला बोल के ये बताया कि तुम अंदर से छोटे इंसान हो, ज़रा बड़े बनो, आदमी बनो, इंसान बनो। हम यानी इस तरह से देखने से मसाइल में सिर्फ क्या होता है, छोटी शख्सियत नज़र आती है। ज़रा फिक्र के बुलंद बनो, वहाँ पे आके शोबाजी करो, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो मालूम है यार, देखो किस तरह की हरकतें कर रहा है, वहाँ के लोग बहुत घाघ हैं, उनको भी पता है क्या कर रहा हूँ। वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे साथ मिल के तुम्हारे राग को अलाप लेंगे थोड़ा सा, ताकि अपना भी कोई भड़ास निकाल लें, तुम्हें भी मौका दे दें, ग्राउंड दे दें, चलो तुम बड़े हो जाओ। ये सबको मालूम है, ये तो जो पोर्टर्स हैं ना, ये बहुत उस्ताद पाकिस्तान में जो पोर्टर्स ट्रॉलीज वगैरह चला रहे हैं, ये बहुत उस्ताद होते हैं। ये जैसे ही देखते हैं ना कोई शोबाजी के मूड में, ये और उसको शोबाजी का ग्राउंड दे देते हैं। अब वो बंदा खुदा बेचारा आ रहा है शोबाजी के मूड में, उसको पहला बंदा जो मिला उसको शोबाजी का ग्राउंड दे रहा, तो वो फूल जाता है, कहता है अरे भाई मेरी जगह आ गया मैं यहाँ पे। ये बचपना है, बचपने की हरकतें, शख्सियत की कमी की निशानी। आप थोड़ा सा वजीन इंसान बनो, इन चीज़ों के ऊपर शोबाजी मत करो, अपनी शख्सियत का मुजाहरा अच्छे तरीके से करो। तो मेरा तो मेरा नहीं ख्याल कि हत्ता यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो इन चीज़ों पे शोबाजियाँ करते हों, ये बाहर से आने वाला क्यों कर रहा है, तो बहुत ही छोटेपन की बातें हो गई ना। अच्छा ये हमें अलहदा से पता है कि ज़्यादातर यहाँ रहने वाले गरीब हैं बेचारे, ये हमें अलहदा से पता हो गया है, और उधर वालों को भी पता चल गया है कि भाई वो ज़्यादातर गरीब हैं बेचारे। तो अब तुम शोबाजी किस बात की कर रहे हो यार, बिल्कुल देखिए उनको पता है कि यहाँ पे सारी ज़िंदगी कर्जे उतारते उतारते गुजर जाती है। अब यहाँ वहाँ पे जो पाकिस्तान में कोई घर लेता है पूछता है घर कितने का, मैं मतलब बताता हूँ मसलन 6 करोड़ का, कहता है कैश, और तो बामा कैश के अलावा होता क्या है, ये तुम हो जो गरीब हो यहाँ कर्जे ले लेके खरीदते हो, वहाँ लोग कैश में खरीदते हैं। तो अब ये देखो शोबाजी की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ पता ना हो लोगों को, सब पता है, अब क्या उसमें। तो ज़रा बड़े बनना चाहिए इंसान को, ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई जाना चाह रहा है वहाँ पे, प्लानिंग करके जाए, अच्छा सा प्लान करे कि मैं समय वहाँ पे जाऊँगा, मुझे क्या लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो देखिए मैं क्या लेने जा रहा हूँ। मसलन अब मैं आपको क्या ये कहूँगा कि वहाँ पे सारे बच्चे आपके बच्चे यहाँ पे तो ख़तरे में, वहाँ पे बिल्कुल सुकून हो जाएगा, नहीं कोई सुकून नहीं, वहाँ पे भी चैलेंज है, वहाँ पे भी बच्चों की ज़िंदगियों को और मसलन कल्चर को ख़तरा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ना वहाँ पे कोई इतना आसान है, ना यहाँ पे कोई इतना आसान है। आप अपनी ओरिएंटेशन चेक करें, आप अपना अच्छा सा प्लान बनाएं, उसके बाद वहाँ पे जाएं, थोड़ा सा ये सोच के जाएं कि भाई आप अपनी लंबी मुद्दत के काम को हल करना चाह रहे हैं। अब मैं ज़्यादातर जिन लोगों को देखता हूँ वापस जाते हैं, वो पता नहीं किसी एक आइडियलिज्म के अंदर वापस जा रहे होते हैं, वो एडजस्ट हो नहीं पाते ज़्यादातर लोग, इसीलिए वापस आ जाते हैं। तो अच्छा सा अगर जाना ही है तो प्लान बना के जाएं, सोच समझ के जाएं, और ये छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग से निकाल कर ज़रा एक स्टैंडर्ड की एक शख्सियत के साथ वापस जाएं। सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी एंड बेसिक नेसेसिटीज़ की कंडीशन को किस तरह एड्रेस करें, या उसकी कंडीशन को, हाँ उनको एड्रेस करने के तरीक़ेकार होते हैं। मसलन आपको सिक्योरिटी का इशू समझ में आ रहा है तो आप किसी ऐसी जगह पर रह लें, या मसलन आपको समझ में आता है नेसेसिटीज़ का मसला है उसके लिए भी अलग से प्लानिंग की जा सकती है। वो सब प्लानिंग का हिस्सा होता है, वो सब प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन आपकी ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, आप जा क्यों ना ऐसा उसको पहले से देख लें और फिर आप समझ जाएंगे। एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि कोई ये सोच के जाए कि मैं तो पाकिस्तानी कौम पर एहसान कर रहा हूँ कि मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप एहसान मत करें, आप यहीं रहें, तो पाकिस्तानी कौम ये एहसान क्यों ले ले भाई, तो ऐसा कोई नहीं होता है कोई आपका एहसान ले रहा होगा। आप यहाँ पे जी रहे हैं, जिए मर्जी से, वहाँ पे जी रहे हैं लोग, ऐसा थोड़ी है। एक पता नहीं क्यों हम लोग के जहन में है जैसे वहाँ पे 20 करोड़ लोग सब मर चुके हैं। नहीं भाई, जी रहे हैं, और मैंने कहा पैसे वैसे के एतबार से भी बहुत सारे लोग आपसे बेहतर जी रहे हैं, फिर पैसे के हिसाब से। हाँ मीन सर, एनवायरनमेंट की कंडीशंस यहाँ ज़ाहिर है कि नो डाउट बहुत बेहतर है, पानी का मामला है और सर पॉल्यूशन वगैरह का इशू है या रोड्स वगैरह की कंडीशन है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल इस तरह मत सोचें कि आप वहाँ जाके किसी पे एहसान कर रहे होंगे। नहीं, बहरहाल मुल्क है, चल रहा है, बंदे रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजर रही है, यहाँ से तो कई टाइम ज़्यादा है ना वो लोग, तो बहरहाल इंसान है, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ ये भी बड़ा, ये किसी ने लिखा, इफ़ अल्लाह कैन डू एनी थिंग, अल्लाह अकबर, वाई डिड ही नॉट पुट शैतान इन हेल। अभी बच्चा कुछ बहुत सही सोच रहा है, उसने कहा ये सारी मुसीबत शैतान से आई है, अगर खुदा शैतान को उठा ले तो मुझे नमाज ही नहीं पढ़नी पड़ेगी, मामला ही खत्म हो गया, ये सारी मुसीबत शैतान ने की है। और अगर खुदा कुछ कर सकता है, मसलन ये बेचारा सोच रहा है, तो वो शैतान को जेल में डाल दे, मामला खत्म, मेरी तो जान छोड़ रही है वो। एक दफा हम एक टीचर्स ट्रेनिंग की एक क्लास ले रहे थे अमेरिका में, तो ऐसे जो दीनियात सेंटर में पढ़ाने वाले उनके लिए, तो वहाँ पे एक साहिबा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि बच्चों को जहन्नम के बारे में बताएं कैसे। तो मैं चूंकि कई दफ़ा इसको देख चुका था क्वेश्चन को, तो मैं समझ गया। मैंने उनको कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हुआ कि हमने बच्चों को बताया कि नमाज पढ़ो, उसने पूछा भाई नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खुदा उन्हें मुताल सज़ा देगा, जहन्नम में डाल देगा, वहाँ आग जलती है, वो ये होता है, वो ये होता है। अब सारी कहानी जहन्नम की सुना दी उसको, बच्चे ने सुन ली, उसके बाद कहने लगा मुझे पता है मेरे बाबा कहाँ जाने वाले हैं। वो भाई सोच समझ के हम लोग अपनी दानिश में कुछ सिखा रहे होते हैं लेकिन मामले को बहुत ख़राब कर देते हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में तो ज़ाहिर पिक करते हैं, फिर बच्चे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अब बच्चों तो क्या, बड़ों का मामला देखो किस तरह ख़राब होता है। वो लंदन में एक साहब वहाँ पर जुलूस हो रहा था, लंदन में जुलूस निकल रहा था, वो जुलूस जो निकल रहा था उसमें वो जैसे वो लिखते हैं कि भाई व्हाट्स हैपनिंग हेयर, इस तरह का एक पम्फलेट बनाते हैं, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, मसलन ये आप पम्फलेट। वो एक आदमी था वहाँ पे गुजर रहे थे, साहब एक लॉयर हैं, वो गुजर रहे थे अपने मोमिन शिया हैं, उन्होंने कहा भाई दिखाना क्या दे रहे हो तुम लोगों को। उसने देखा उस पर लिखा था कि इतने साल पहले एक आदमी था, उसने इमाम हुसैन को शहीद किया, और वो आदमी जो था वो बहुत बुरा था, वो शराब पीता था, वो म्यूज़िक सुनता था, वो कुत्तों से खेलता था। तो उसने कहा भाई खुदा का वास्ता इसको तो छुपा ही दो। क्यों ना, उसने कहा जो अंग्रेज पढ़ेगा वो कहेगा मेरा बंदा था वो। मैं भी यही सारे काम करता हूँ। तो कहने तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रेजेंट सही नहीं कर रहे हो। मसलन यजीद जो था वो ये था, ऐसे इसको मत बताओ, और चीज़ें बताओ, मसलन किस तरह उसने बंदे मारे थे, कत्ल किए थे, हुकूमत पे कब्जा कर लिया था, अच्छे लोगों को मसलन ख़त्म कर रहा था। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है। तो अब इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, इसके दिमाग में ये आ रहा है कि सारा निज़ाम शैतान पे घूम रहा है सारा। तो भाई वो खुदा शैतान को क्यों नहीं शिकस्त दे पा रहा। अच्छा अब इसको नहीं पता कि भाई आपको खुदा ने मुताबिक चांस दे रहा है डेवलप करने के लिए, उस चांस में आपके सामने कुछ टास्क रखे हैं, आप उन टास्क को पूरा करेंगे, आप डेवलप होंगे। शैतान इन बिटवीन एक इंस्ट्रूमेंट है उस एग्ज़ाम का, उस टेस्ट का, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस बेचारे के दिमाग में सारा केस ही शैतान के ऊपर बन गया है। तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है कि भाई कैसे बनाइए। हाँ अच्छा, हम मैं जो कहता हूँ कि सवाल बोलने को मत दो, वो इसीलिए कहता हूँ कि लोग नाम लिख बोलना शुरू कर देते हैं। नाम बोलते हैं तो फिर बाद में फिर समझना मुश्किल पड़ जाती है मेरे जैसे आदमी के लिए। तो अब इसमें इन्होंने एक नाम लिखा हुआ है तो इसी ने मैं लिखवा लेता हूँ ताकि नाम हो तो मैं उसको सेंसर में ले आऊँगा, फिर नाम नहीं पढ़ूंगा। तो भाई उन्होंने लिखा यूके बेस्ड शिया स्पीकर वॉज इन्वाइटेड टू पाकिस्तान, नाम मैंने स्किप कर दिया, आप सब समझ जाएंगे, फॉर एन इवेंट ऑन द होली प्रॉफिट। वाई वॉज अ पाकिस्तान बेस्ड शिया आलिम नॉट इन्वाइटेड, वट माई देयर रीज़न बी। हाँ, उसकी एक वजह है जो मैंने आपने पढ़ते हुए आपने एहसास कर ली होगी, वो जो गुरु पाकिस्तान में हमारे दोस्तों का है जो इनको बुला रहे हैं, उनको इंग्लिश एक्सेंट में स्पीकर चाहिए, पहली बात। अब ज़ाहिर पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इंग्लिश एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा हो, इंग्लिश नहीं चाहिए उनको, एक्सेंट चाहिए। अब वो ज़ाहिर पाकिस्तान में उनको नहीं मिल के दे रहा, तो उनको ज़ाहिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फिर वो इम्पोर्ट कर लिया उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात उनको ये चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ कैसी आदतें रखते हैं जिसको पाकिस्तानी कोई आलिम एंडोर्स नहीं कर रहा है, तो उन्हें कोई ऐसा आलिम चाहिए जो उनकी उन आदतों को एंडोर्स कर सके, तो इसके लिए उनको ज़ाहिर फिर एक इम्पोर्ट करना पड़ गया। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर उनको एक आलिम बाहर से लाना पड़ गया कि जो इन कामों को उनको एंडोर्स करे कि हाँ भाई ये भी चलता है इसके साथ इस्लाम, तो इस खातिर वो लेकर आए। वजह बात जाहिर है, बहुत फ़र्क साफ जाहिर है, उनको पुराने लोगों को फौरन ऐड याद आ गया होगा, फ़र्क साफ जाहिर है। हाँ हाँ, बाकी मैं बोलूँगा जाएगा, मैं उसी कंपनी का मालिक हो गया हूँ शायद। अच्छा, इन योर ट्रेवल्स थ्रू कम्युनिटीज इन द वेस्ट, व्हाट डू यू फील एज अवर मेन नंबर वन वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स? स्वॉट एनालिसिस मैं ही कर दूँ सारा, हाँ? तो भाई आप भी कुछ कुछ करो। मैंने बता दिया कि भाई आप जो मुझे समझ में आता है वो ये कि बिल्डिंग्स और सेंटर्स बनाना मुश्किल का बहुत छोटा सा एक हल था, अब आप गुजर गए हो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा सिक्स क्लास में इम्तिहान देके पास हुआ, अब वो मैट्रिक में आ गया और मैट्रिक के पेपर में वही लिख कर आ गया जो सिक्स की क्लास में लिख कर उसने ए ग्रेड लिया था, और वो कह रहा मुझे यहाँ भी ए ग्रेड मिलेगा। ओ भाई, ये क्लास 10 है, ये 6 नहीं है, ग्रेड 6 में लिखते तो बात सही थी। एक वक्त था जब हमारी ज़रूरत शायद सेंटर्स के ज़रिए पूरी हो सकती थी, लेकिन ज़मीनें बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, चैलेंजेस बदल जाते हैं, अब कुछ और करना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक एक सेंटर मिलियंस ऑफ पाउंड्स और डॉलर्स और या मतलब क्या कुछ खर्च कर रहा है, फिर वही बिल्डिंग, फिर उसी के ऊपर। बस जगह है ज़रूरत, मैं कबूल करता हूँ, ज़ाहिर मैं नहीं कह रहा हूँ कि एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़े लेवल पर भी प्लान कर लीजिए। और मैंने अर्ज़ किया कि कौमों के तजुर्बों से सीखना पड़ेगा कि वो जो कौमें सर्वाइव करने वाली थी वो क्या करके सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, अब मुमकिन है कोई मुझसे कहे मौलाना अगर ये सेंटर्स नहीं होते तो आप कहाँ तकरीर कर रहे होते। मैं कबूल कर रहा हूँ कि एक लेवल के ऊपर हमारे लिए सेंटर्स ने हमारे लिए बका का एक बहाना दिया कि हम बाकी रहें, सर्वाइव कर सकें। उस मौके के ऊपर वो बड़ा सोल्यूशन हम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन मुझे ये लग रहा है जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ रही है और अब हम उस बड़े सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, लिहाजा उसके बगैर अपने आप को छोटे रास्ते के ऊपर हम सेटिस्फाई ना करें। बाद वक़्त इंसान छोटे छोटे अहदाफ बनाकर खुश हो जाता है और कहता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, जबकि वो बड़े काम कर सकता था। खुदा चाहता है कि हम लोग बड़े कामों को भी टारगेट करें। मुझे अल्लामा इकबाल कहते थे कि तू शाहीन है, हाँ, उस शेर का भी बेड़ा गर्क लग चुका है, तो इसलिए बहरहाल शुक्र है कि अभी आप लोगों को असली वाला याद है, वरना पाकिस्तान के बच्चों को दूसरा वाला याद हो गया, अभी उनको असली वाला भूल गए वो लोग कि क्या था वो। हाँ अच्छा, हाँ इन्होंने लिखा है कि मैनी न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ चाइना इम्प्रिजनिंग मुस्लिम्स इन कैंप्स एंड ब्रेन वॉशिंग दैम, व्हाट इज़ ईरान रिस्पॉन्स टू दिस, व्हाट शुड अवर रोल बी। मेरा अपने ख्याल है जो गलत है उसको गलत कहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर चाइनीज़ ये कर रहे हैं और वाकई कर रहे हैं तो ये बात गलत काम कर रहे हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई असल काम कैसे हल हो सकता है। अलबत्ता ये देखते रहिएगा कि वो वाकई क्या कर रहे हैं, वाकई क्या कर रहे हैं, चूँकि ये हमें मालूम है कि हमारा जो मीडिया होता है ये बाज़ औक़ात कुछ और तरीके से प्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि चाइनीज़ सारे काम सही कर रहे होंगे, नहीं नहीं, चाइनीज़ को अगर मौका मिलेगा तो गलत काम बहुत करेंगे। यही कि मसलन उन्होंने बहुत सारी दफ़ा अपने मुल्क के अंदर बड़े बलबे मचाए, बड़े खतेआम किए हैं, ये कोई आसान काम नहीं है कि इस तरह से हर आदमी उठे थोड़े 15-20 साल के बाद 30 साल के बाद एक कल्चरल रेवोल्यूशन आया, सबको हैंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं। कोई भी आप किसी को भी एब्सोल्यूट ٹروتھ مت نہیں کہہ سکتے سوائے امام معصوم کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے, جو امام فرماتے تھے کہ حق کو پہچانو اہل حق کو دیکھو. ہم الٹا نہیں کر سکتے, ہم کہیں جو چائنیز کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, نہیں, انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں, پہلے بھی کی ہیں, بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اور جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ ہے ممکن ہے صحیح نہ ہو, لیکن یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ ان مسلمانوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ مچی بھی ہو. تو ممکن ہے ان کے اندر فنڈامنٹلسٹ ہوں جن کو ڈیل کرنا پڑنا ضروری ہو, اور انہوں نے بھی غلط طریقے سے ڈیل کیا ہو, تو ممکن ہے تالی دونوں طرف سے بج رہی ہو. تو ان سب چیزوں کو, گراؤنڈ ریئلٹی کو چیک کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. بہرحال بہت سوال تھے اور آپ نے بڑا صبر و تحمل دکھایا. اچھی بات یہ تھی کہ میرے سامنے کوئی گھڑی ہی نہیں تھی, تو انہوں نے جو کچھ بھی بیچاروں نے لکھا ہو کہ کتنی دیر میں جواب دینا ہے, میں نے بھی گھڑی بھی دیکھی نہیں اور میں سوچا بھی نہیں, اور آپ بھی گئے نہیں. اگر آپ میں سے پانچ چھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے تو پھر میں بھی دیکھتا کہ بھائی ابھی گھڑی کیا ہے, ٹائم کیا ہے, تو آپ بیٹھے رہے, میں بھی سوال کا جواب دیتا رہا. اللہ آپ کے صبر میں اضافہ فرمائے. آپ کو کوئی ثواب ملے یا نہیں ملے, صبر کا ثواب تو ملا ہی ملا, وہ تو کہیں نہیں گیا آپ کا انشاءاللہ. آخر میں اگر میں کسی سے ریکویسٹ کروں دعائے امام زمانہ, کوئی بچہ کھڑے ہو کے پڑھا دے, بچوں کے اندر ایک معصوم پن ہوتا ہے نا, تو ان کے پڑھانے میں ایک عجیب لطف ہوتا ہے, بہت اچھا پڑھاتے ہیں. بیٹا پڑھاؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شاباش.